ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം ശ്രീഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ ശ്രീരാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ആനന്ദലീലാ വിഗ്രഹായ ഹേമാംഗദിവ്യം സചി സുന്ദരായ തസ്മൈ മഹാപ്രേമ രസ പ്രദായ ചൈതന്യ ചന്ദ്ര നമോ നമ. മാധുരീ ആസ്വാദന സുഖകാ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ജയ കലി പ്രകടേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കേ സഭി ശ്രോതാവോ കോ സാദർ വന്ദൻ ഹൈ. നവദാ ഭക്തി കാ ये प्रथम अंग है श्रवण, जो साधना में सबसे सरल और सुखजन्य है। भगवान की मंगलमय लीला कथा को सुनना ये श्रवणम भक्ति है, जो सुखदायी है और सरल है। न एतद् अस्मात् परम किंचित् मन शुद्धये न विद्यते। हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए, मन को कामना वासना से मुक्त करने के लिए कोई सरल वस्तु है तो वह है भगवत कथा अमृत का श्रवण। और आप सभी का अनुभव होगा कि जो भी हम करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदनम, कोई भी भक्ति हम करते हैं, लेकिन जहां तक मन का भगवान में लगने का विचार है उसमें सबसे ज्यादा मन अगर भगवान में लगता है तो वो श्रवण में। जब करते हुए भी पता नहीं कहां हम लोग होते हैं, लेकिन कथा सुनने हम बैठते हैं तो आप सभी का अनुभव होगा कि समय कहाँ चला गया, हम कहाँ बैठे हैं, क्या करना है वो भी पता नहीं रहता। अब हम लोग की ये बद्ध दशा में भी अनुभव है। और भगवान श्री कृष्ण राधा भाव लेकर गौरांग बन के भूतल पर पृथ्वी पर पधारे, इसी भक्ति का आचरण करके उपदेश देने के लिए। क्योंकि गीता में उन्होंने बोला, मेरे भक्त बनो, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ। और भगवान को लगा कि धर्म संस्थापनार्थ आए, धर्म की स्थापना करनी थी, हमने बोल दिया, कर दी, चलो अब जाते वापस अपने धाम। भगवान सोच रहे थे कि मैं धाम में जाऊंगा तो सबके लिए जगह बनाना पड़ेगा, कि सब लोग अभी मेरा भजन करके मेरी बात मान के उधर ही आ रहे होंगे, लेकिन नीचे देखते कोई नहीं आ रहा। गीता में कृष्ण ने बोला, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, और नीचे वाले मनुष्य क्या कर रहे हैं, भगवान को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं गीता में बोला तो सही लेकिन काम नहीं बना, मतलब इनको बोल के, ये प्रवचन से समझने वाले नहीं है, इनको करके दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए आपनी आचरी प्रभु जीवे रस सिखाए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को वंदन करते हुए कहा, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। स्वयं की भक्ति कैसे करनी चाहिए भगवान की, ये भक्त सिखा सकता है। इसलिए भक्त रूप भक्ता अवतार में, इसमें भक्त रूप गौरांग है, पंच तत्व भक्त का रूप लिया भगवान। और वैराग्य प्रधान महाप्रभुर गण सब वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराण। ये जो परम पुरुष आदि पुरुष जो गोविंद है, वो भक्ति की विद्या को शिक्षा देने के लिए, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, चैतन्य शरीर धारण किया, उन चैतन्य देव के चरणों में सादर वंदन करते हैं। भगवान पृथ्वी पर आकर इसीलिए लीला करते हैं कि हम लोग इसका श्रवण कीर्तन करके संसार जन्म कर्म चक्र से छूट जाए। भागवत में वर्णन है ना, अनुग्रहाय भूताना मानुषिम देहमाश्रितम भजते तादृशी क्रीड़ा श्रुत्वा तत्परो भवे। भगवान जीवों पर अनुग्रह करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया कि कृष्ण पृथ्वी पर आते हैं, इस प्रपंच में अप्राकृत जगत से उतरते हैं, अवतरण करते हैं, वही चिन्मय शरीर चिन्मय देह चिन्मय पार्षदों को और धाम को भी पृथ्वी पर लाते हैं। किसके लिए, जीवे रकारण गोपीना तुम्हें कृपा पारावार। आप कृपा के असीम समुद्र है, जीवे रकारण आसिया प्रपंच। आप इस प्रपंच में, इस भववर्गमयी जगत में, दुख दुखालय में, अशाश्वत में आप उतरते हैं, क्यों, जीवे का कारण। और इसका उद्धार करने के लिए आप करते क्या है, लीला कैला सुविस्तार गोपीना मम निवेदन सुनो। आप पृथ्वी पर आकर लीला करते हैं ताकि इसी लीला का श्रवण कीर्तन करके शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्ष्मशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तयेव पश्यन्त अचिरेण तावका भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। बस कल महाप्रभु निवेदन कर रहे थे रामानंद राय को कि तुमार मुखे कृष्ण कथा सुनिते होयो मन। मेरा मन हो रहा है कि मैं आपके मुख कमल से भगवत कृष्ण कथा लीलामृत को सुनूं। महाप्रभु ने स्वयं कहा है, श्रवण आदि शुद्ध चिते करय उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है और इसीलिए कृष्ण के प्रति ये सेवा स्वरूप में होने के कारण ये सिद्ध वस्तु है। बस इसको प्रकट उदय करना है और उसका प्रक्रिया, उसकी विधि क्या है, किसी श्रेष्ठ परंपरा में आने वाले साधु से, वैष्णव से सुनना है। जीवंति सन्मुखरिता भवदीय वार्ता, परम उपाय है। तो भक्तों, ये रामराय और गौड़ जो संवाद है, ये गौड़ीय वैष्णव समाज में बड़ा पवित्र और प्रिय प्रसंग है, जिसमें तत्व की गरिमा है और रस की गहराई है। इसको श्रवण करने वाला व्यक्ति शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को तत्व के साथ जानते हुए रस समुद्र में निमज्जित हो सकता है। और इसी का प्रकाशित या प्रचारित या स्वयं आस्वादन करने के लिए गौरांग गोदावरी के तट पर रामानंद राय से निवेदन कर रहे हैं। आंतरिक तत्व स्वरूप से तो विशाखा सखी है, भगवान राधा कृष्ण की जो अतरंगा सखियों में भी प्रमुख सखी है विशाखा जी। अब हमारे मंदिर में राधा गिरधारी के बाजू में दो सखियां है ना, ललिता विशाखा। विशाखा किस साइड में है आप जानते हैं? विशाखा किस साइड में होती है? राधा रानी के साइड में, और ललिता जी ठाकुर जी की साइड में, क्योंकि ललिता जी थोड़ी इनको कंट्रोल करती है। ललिता थोड़ी गुरु है, दादागिरी करती है हमारी, बॉम्बे की भाषा में बोला जाए तो ठाकुर जी से भी कान पकड़वाती है। लेकिन विशाखा सखी राधा रानी की परम प्रिय प्रेष्ठा सखी है। आप उज्ज्वल नीलमणि पढ़ेंगे तो नम्र सखी, प्रिय सखी, परम प्रेष्ठा सखी, सखियों के भी वर्ग भेद किए गए, गुण बताए गए और उसके अपने अपने स्वभाव के अनुसार गुण होते हैं। और बाह्य लीला में, गौर अवतार में भवानंद राय के पुत्र थे श्रीपाद रामानंद राय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त पार्षद हुए भवानंद राय। भवानंद राय को महाप्रभु जी पांडु कह के पुकारते थे कि आप तो कुंती नंदन पांडु हो। और पांडु के पांच पुत्र थे, ऐसे ही भवानंद राय के भी पांच पुत्र थे, गोपीनाथ पटनायक, वाणीनाथ पटनायक, कलानिधि, सुधानिधि, चार हो गए और पांचवे श्रीपाद रामानंद राय। बालपन से ही प्रखर मेधा थी। वर्णन आता है गौड़ीय ग्रंथों में कि आप गए होंगे अलारनाथ, जो ब्रह्मगिरी पर्वत माना जाता है उत्कल क्षेत्र में, वो उनकी बाल्य जन्मभूमि रहा है रामानंद राय जी का। लेकिन वस्तु तो तत्व पर विचार करने पर ये बाह्य गुण कोई वर्णन के विषय नहीं बनते, क्योंकि स्वाभाविक होते हैं सिद्ध पार्षद होने के कारण। और भक्ति रत्नाकर में श्रीनिवास आचार्य ने रामानंद राय के विषय में लिखा है, रामानंद द्वारे प्रभु कंदर्पे नाशे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने एक एक पार्षद के द्वारा वैष्णव जगत को एक एक शिक्षा दी है। ये जो हमारा पूरा भक्ति शास्त्र तीन बेस पर खड़ा है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तो प्रयोजन जो है कृष्ण प्रेम, भक्ति अभिधेय, और इनके तीन देवता भी गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा गोविंद देव, अभिधेय के प्रयोजन के गोपीनाथ। ऐसे बाह्य रूप से मधुसूदन सरस्वती ने इसको वृंदावन में पूजा उपासना किया, लेकिन इसके गौड़ी आचार्य रघुनाथ है। लेकिन प्रयोजन तत्व के प्रचार के अंतर्गत आचार्य कोई है तो श्री रामानंद राय। श्रीनिवास आचार्य भक्ति रत्नाकर में लिखते हैं, रामानंद द्वारा कंदर पेर, कंदर मतलब कामदेव, कामदेव को जीतकर शुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त किए हैं, इसके लिए कोई आदर्श है तो राय रामानंद है। प्रद्युम्न मिश्र को जब भेजा कथा सुनने के लिए रामानंद राय के पास, तब इसका विस्तार से वर्णन उस अध्याय में हुआ है। दामोदर द्वारा निरपेक्ष सिखाई, सर्वोच्च स्थिति में होने पर भी इतने समर्पित रहे ललिता सखी आवेश दामोदर पंडित स्वरूप दामोदर, नित्य निरपेक्ष। हरिदासेर द्वारा प्रभु सहिष्णुता जानाइल, रूप सनातेनर द्वारा दैन्य प्रकाशिल। ये सब भक्ति के आभूषण है, दैन्य, सहिष्णुता, निरपेक्षता या फिर काम विजय, गंधर्व नाश। और एक एक के लिए एक एक, ये हमारे गौड़ी आचार्य है जिसने महाप्रभु, जिस पर महाप्रभु जी ने इसके द्वारा इसको आदर्श बना के जगत को शिक्षा प्रेरणा दी। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद रामानंद राय के विषय में आचार्यों ने बहुत जगह बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कल हम सुन रहे थे कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी उनके गुण गा रहे हैं। प्रभु कहे तुम्ही महाभागवोत्तम उत्तम, वहां भागवतों में भी आप उत्तम हो। चैतन्य महाप्रभु के विषय में आप सब भक्तों ने सुना होगा कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य निवेदन कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु निवेदन कर रहे थे, फिर भी वो ओडिशा के राजा प्रताप रुद्र को मिलना नहीं चाहते थे। अब मध्य लीला में 11-12 अध्याय में आधा अध्याय रिक्वेस्ट करने में गया है, मनाही कर देते थे। लेकिन जब रामानंद राय पुरी में आए और वो जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, और तब रामानंद राय ने कहा कि प्रताप रुद्र ने मुझे आपकी शरण में भेजा है, उन्होंने कहा कि राय तुम्हारा भाग्य है कि तुम महाप्रभु गौरांग का दर्शन करने या सेवा में जा रहे, और फिर भी उसने कहा कि तुम जाओ तो भी तुम्हारा पगार चालू रहे, फुल छुट्टी दिया है। जब रामानंद राय ने कुछ गुणावली निवेदन किया, जबकि पहले नित्यानंद प्रभु कर चुके थे और स्वयं भगवान होने के कारण ये भी सर्वज्ञ है जानते थे, और यहां तक कि सार्वभौम भट्टाचार्य भी बोल चुके थे, लेकिन यहां तक बोल दिया था अब की बार अगर कोई मुझे राजा से मिलने को बोला तो मैं पूरी छोड़ के चला जाऊंगा, इतना भारी बात हो गया। लेकिन प्रभु कहे राय तुमी भागवत प्रधान, वहां पर वर्णन है चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे रामानंद राय तुम भागवतों में क्या हो प्रधान। अगर आप भागवत का अध्ययन करते होंगे तो दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में वर्णन आया है, भागवत प्रधान शब्द परीक्षित के लिए आया है। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद वैयास की च भगवान अथ विष्णुरात प्रत्यर्ष कृष्ण चरितम कलिकल्मशग्नम व्याहर द्वारभत भागवत प्रधान। प्रभु नंदन, प्रभु वंशी शौनक जी ने एवं इस प्रकार जब पूछा गया, हे भृगु सोनो सुनक जी, शुक जी बोल रहे हैं, विष्णु रात ने जब इस तरह पूछा तो वैया सकी से भगवान कृष्ण चरित्रम, कृष्ण चरित्र का विशेषता क्या है, कलि कल्म शग्नम, जो कलयुग के कलमश को विनाश कर दे, पुण्य श्रवण कीर्तनम पाप विनाशिनी ताप नाशिनी, कृष्ण कथा के विषय में ये विशेषण भागवत जी में सर्वत्र व्याप्त है। और व्याख्या करने लगे भागवत प्रधान, भागवत प्रधान, एक तो भागवत शब्द का क्या अर्थ होता है, जो भगवान का है वो भागवत, फिर वो ग्रंथ भी है और भक्त भी है, भागवत दो है ना, ग्रंथ भागवत और भक्ति रस पात्र भागवत। लेकिन यहां पर वर्णन है भागवत प्रधान, प्रभु कहे राय तुमी भागवत प्रधान, जैसे भागवत में परीक्षित जी को भागवत प्रधान, मतलब जो भगवान के जो साक्षात स्वरूप विग्रह है, ऐसे श्रीमद् भागवत को ही जीवन में सार सर्वस्व माने, जिसकी बुद्धि स्वीकार करे कि श्रीमद् भागवत शास्त्र ही श्रुति सारम एकम है, वो व्यक्ति है भागवत। मतलब भागवत को छोड़ के और कुछ सुनना, ऐसा नहीं कि भाई चलो शिव पुराण कर दो या ये भागवत कर दो या ये पुराण सुना दो, नहीं, केवल भागवत, या फिर जीवन में भगवान के भक्तों को ही जो सर्वस्व माने, भागवत शब्द ना दूसरा अर्थ कि भगवान के भक्तों को ही आराध्य माने, उसको ही सार सर्वस्व माने, उसको अपना दास मानते हुए उनको प्रसन्न करने के लिए जो व्यस्त रहे वह है भागवत प्रदान। मतलब प्रधानता भागवत को दे, चाहे वो ग्रंथ हो या भक्त हो। तोमा के जे प्रीति करे से ही भाग्यवान। और आप जैसे भागवत वैष्णवों में जो प्रेम करता है ना, वो सबसे बड़ा भाग्यवान। प्रकार अंतर से महाप्रभु प्रताप रुद्र का गुण गा रहे हैं कि आप भागवत प्रेमी हो, भागवत प्रधान हो, और राजा का आप में प्रेम है, तो वो राजा भी तोमा के जे प्रीति करे से भाग्यवान। और सही कारण है कृष्ण तारे कृपा करी बारे, और इस कारण से कृष्ण उस पर भी, कृष्ण मतलब वही कृष्ण है गौराजी, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, यही कार्य कृष्ण कृपा करी बे, तो इसीलिए इस पर कृष्ण कृपा करेंगे। वहां पर भी भागवत प्रधान कह के महाप्रभु जी ने कहा, और यहां पर भी रामानंद राय को कह रहे हैं कि आप सारे भागवतों में प्रधान हैं। और रामानंद राय क्या कह रहे हैं, रामानंद राय ने बड़ा सुंदर बोला, वैसे आज वो प्रभु जी नहीं आए हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना तो बोल पाए, सरल है, गाइए। रामानंद राय क्या कहे 38 नंबर श्लोक में, आमार निस्तारी ते तो मार इहा आगमन, आमार निस्तार पराम दयालु तुमी पतिता पावन, महांत स्वभाव ये तारीते पामर, कार्य नहीं तबु ज्ञान तार घर, अमार निस्तारित तुम्हारी है आगमन। जबकि महाप्रभु ने कहा था कि तुमको मिलने के लिए मैं यहां आया हूं, और ये कह रहे हैं कि आप यहां आए हैं मेरा उद्धार करने के लिए। क्यों? क्योंकि परम पावन दया पतित पावन आप हो ही हो, पतित पावन हेतु सब अवतार, आपका अवतार तो इसलिए हुआ है कि सारे पतितों को पावन करने के लिए। देखिए चैतन्य महाप्रभु की अवतार की ये वैशिष्ट्यता, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता है, सबसे पतित बनना पड़ेगा। जो जितना ही पतित है वो महाप्रभु के लिए प्रथम नंबर वन कृपा पात्र बने। तो आप लोग ये मत करें, हम लोग पतित है लेकिन मानते नहीं है, ये कमी ये है, हम अपने आप को महात्मा ही मानते हैं। पतित पर महाप्रभु कृपा करने के लिए आए, इसलिए वो बड़ा सुंदर भजन में हमारे वैष्णव ग्रंथ में है, वैष्णव गीत में नरोत्तम दास ठाकुर गाए हैं कि गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, गौरांग करुणा करो गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, गौरांग गीता प्रभु नाही त्रिभुवने समापति बड़ी सुंदर बात है। वो कहते हैं कि मैं अपने दांत में घास का तिनका लेकर आपको दंडवत करता हूं। दंते तृण धरी डाकिए तुमार कृपा करी ऐसे अमार मंदिर हृदय मंदिर है अमार। आप कृपा करके हमारे हृदय मंदिर में आइए। अनर्पित चरिचिराज करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उज्ज्वल रस भक्ति स्वयं हरि पुरट सुंदर धित कदंब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु प्रकट हो जाइए अपने लीला परिकर पार्षदों के साथ सचिनंदना। इसी बात को कहते यदि दया ना करिबो पतित देखिया यदि दया ना करिबो पतित देखिया पतित पवन नाम किसेर लगिया पतित पवन नाम अगर आपको पतित पर दया ही नहीं करना है तो अपना नाम चेंज करिए। अगर आप अपने आप को पतित पावन कहलाना चाहते हैं, ये टाइटल शुरू रखना चाहते हैं, तो पहले मेरा उद्धार कर दे। यदि दया ना करी वो पतित देखिया तो फिर पतित पावन नाम रखा क्यों है? या तो नाम सुधारिए या हमें सुधारिए, दो दो हमें उधारिए, दो में से एक तो करना पड़ेगा ना। दानी नाम भी रखना एक रुपया देना भी नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा। काम भी करो ऐसा, लेकिन महाप्रभु ऐसे है। कितने पतित को तार दिया, पतित शिरोमणि जगाए मधाए का उद्धार करके यमराज का दरबार हिला दिया। चैतन्य भागवत में वर्णन, यमराज हिल गया उसका सिंहासन कि इन लोगों का उद्धार हो सकता है, तब तब सबका हो गया। और प्रभुपाद जी ने इससे बड़े बड़े जगाए मधाए को तार दिया यूरोप अमेरिका में इसी नाम से, इसी गौर कृपा से। तो यहां पर राय जी कहते हैं कि हे गौरांग अमार निस्तारिते तुमार इहा आगमन, आप यहां पर आए हैं प्रभु केवल और केवल हमारा कल्याण, हमारा मंगल, हमारा उद्धार करने के लिए आप पधारे। और महान तेरा आगमन, कोई भी वैष्णव साधु घूमता है उसके पीछे कारण क्या होता है? निज कार्य नहीं, अपना स्वार्थ नहीं होता, बस वो कृपा करने के लिए घूमता है। अनुग्रहायेव भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, विदुर जी ने कहा ना, कृष्णाद विमुखाद देवाद, जो कृष्ण से विमुख हो चुके हैं और बस अधर्मशीलस्य, और जो अधर्म आचरण करके सीधा नरक जाने वाले हैं, अनुग्रहायेव भवन्ति, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये जनार्दन के जो ये भक्त है वैष्णव है वो इसलिए घूमते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि साधु भिक्षा मांगने के लिए नहीं घूमता, भिक्षा तो बहाना है, भिक्षा के बहाने उस द्वार पर जाकर उस घर संसार में जो सड़ रहा है, विषय वासना का कीड़ा बन चुका है, उनके ऊपर करुणा करने के लिए जाते हैं कि उनको देख लेगा पाप नष्ट हो जाएगा, उनको कुछ दे देगा भक्ति के द्वार खुल जाएगा, क्योंकि महत सेवा द्वार आहु विमुक्त है। चाहे अज्ञात सुकृति जान के या अजान के सच्चे साधु की सेवा हो गई, तुम्हारे मोक्ष के दरवाजे खोल देगी ये। और इसीलिए जब गर्गाचार्य गए ना नंद महाराज के यहां नामकरण संस्कार करने कृष्ण बलराम का, वसुदेव जी ने भेजा कि भाई मैं रख के आया हूं सावन वद आठम की रात को, और बड़े हो रहे हैं वहां पर, लेकिन हमारे यादव के पुरोहित तो गर्ग है, शांडिल्य के भी गुरु थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है गर्ग, कोई सामान्य नहीं थे। और यदुओं के पुरोहित, यदुओं के पुरोहित बनना मतलब यादव सेना का नाम डंका बजता था उस समय, कोई नाम नहीं ले सकता। भाईगिरी में भी नंबर वन थे। जैसे आजकल कोई होता ना तो नाम नहीं लिया जाता उस गैंग का, यादव सेना मतलब नारायणी सेना। इसके लिए भीख मांगना आना पड़ा इन लोगों को भी कि आपकी नारायणी सेना किसे मिलेगी भाई, यादव किस पक्ष में रहेंगे। लेकिन दुर्योधन वहां मार खा गया, यादव सेना ले गए, यादव को छोड़ दिया, सेनापति को छोड़ दिया, वो गलती कर दिया बस। क्योंकि उसको पता नहीं कि सेना सब इसकी आज्ञा में चलती है। और अर्जुन यादव को मांग लिया था, यादव श्रेष्ठ शिरोमणि श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो गर्गाचार्य गए, नंद महाराज ने उसका स्वागत ऐसा किया, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जैसे भगवान विष्णु जाते हैं ना स्वर्ग में और देवता लोग जिस तरह ऐश्वर्य से और समर्पण से शरणागति से भगवान विष्णु का स्वागत करते हैं, ऐसे ही क्योंकि भगवान के पिता है ना, संस्कार तो बड़े ऊंचे हैं नंद बाबा के। और फिर नंद बाबा ने बोला, महद विचलनम मीणा गृहिणाम दिन चेतसा निश्रेयसाय भगवन। हे भगवान, भगवान कह के बुलाया कि हे गर्गाचार्य, आप जैसे साधुओं का चलना फिरना घूमना, महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दिन चेतसाम, जो जिनकी चेतना केवल कुटुंब भरण पोषण में ही लग रही है, दीन है, निंदनीय सोचनीय दयनीय अवस्था में। प्रहलाद जी ने कहा ना, गृह बताना मतीन कृष्ण परस्वतोवा मिथो भी देतम गृहवता नाम कुटुंबासक्त चेतसा। और भागवत में आप पढ़ लीजिएगा 28वें नरक का वर्णन जहां आया है, छठे स्कंद में, पांचवे स्कंद के अंत में, वहां पर लिखा है कि जो व्यक्ति कुटुंब में बहुत आसक्ति रखेगा और कुटुंब के व्यक्तियों को अर्थात पत्नी पुत्रों को बढ़िया से पालन पोषण करेगा, वो सीधा नरक जाएगा, सीधा। अब बताओ, और हम यहां पर उसको धर्म कह रहे हैं, इसीलिए वर्णाश्रम को बाह्य पर डालेंगे महाप्रभु। ये सब सिद्धांत समझने की बात है, हम क्या मनु महाराज क्या स्मृति में लिखे और इससे भागवत क्या कह रहा है, ये धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, समझना पड़ेगा। बच तभी सकते हो जब कृष्ण समर्पित परिवार हो, उसमें भी कृष्ण दर्शन और वैष्णव के नाते अनाशक्ति से भजन होगा तभी, नहीं तो फंसा फिर भी। और दुनिया में क्या प्रचार होता है, बस यही धर्म है। और परिवार भी कहां परिवार है, शंकराचार्य से मिल लीजिए एक बार थोड़ा, कस्तम कुतम कुत को आए, कौन हो भाई, कहां से आए हो, कोमे जननी कोमे तातम, ऐसे ही घूमते हो, कुछ बात समझो, ये दिमाग मिला है ना इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करो, पशु जैसे खाने पीने सोने में ही मरोगे। ज्ञाते तत्व का संसार भज गोविंदम, हमारे वास्तविक कुटुंब वास्तविक परिवार कोई है ना तो वो श्री कृष्ण राधा गिरिधारी जी है, वास्तविक बंधु। ऐसे ही हम वेद में तो ये श्लोक तो सब जगह स्कूलों में भी रटाया जाता है, तमेव माता, लेकिन बोलने के लिए बात तो ऐसी होती है, नजर होती है अपनी कार पर कोई ले न जाए चप्पल पर, और यहां पर बोलते तमेव माता पिता तमेव चप्पल को तमेव माता कार को, क्या बोलते क्या है अंदर क्या है वो तो ठाकुर जी जाने कि वास्तविकता में हम कहां है। लेकिन हम तो कहते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है बंधु, और जो भी माता पिता बंधु भी उसी ने दिया है, और जो जीवन की जहां बात है ना वो ये दे रहे हैं, माता पिता जीवन अपना, उनका जीवन भी कौन दे रहा है, ये सांस कौन चला रहा है, नरेंद्र मोदी की व्यवस्था है ये सरकार की, माता पिता की व्यवस्था है, उनका भी सांस चढ़ जाता है तो क्या करेंगे। मिल लीजिए प्रहलाद महाराज को, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिम्हा, इन महाजनों के वाक्यों का चिंतन स्मरण विचार करना, ये है सत्संग। सत्य वस्तु का संग ना, लेकिन आज सत्संग के नाम पे भी कुरसंग डब डब हो रहा है, सब जगह दुख दुखी उसी की बजती है। लेकिन यहाँ पर रामानंद राय सारा पर्दा फाश करेंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु सब पूछ रहे हैं हमारे लिए, मानो पूछ रहे हैं। अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे गीता में, हमारे लिए पूछ रहे। भगवान की अरेंजमेंट थी, नहीं तो अर्जुन जिसका रथ भगवान चलाए, पूरा विश्व जिसकी रथ यात्रा निकला है निकाले, और वे भगवान जिसका रथ चलाए ड्राइवर बने, उसको कभी मोह हो सकता है क्या? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, ये गीता अमृत के लिए वत्स बनाया है केवल उसको, वो है हमारे लिए। तो सारा ये भगवत आयोजन है, ये अवतार लेते हैं, आचार्य को भेजते हैं, ग्रंथ बोलते हैं, उपदेश करते हैं, समझाने सिखाने वाले भेजते हैं, और फिर भी हम लोग फिर नार्थो अर्थस्य जीवस्य तत्व जिज्ञासा में न आए तो फिर गया ना जीवन ऐसे ही। इसलिए सावधान, अभी भी जो सांसें जीवन में बाकी है ना, उसको सार्थक करना है तो सत्संग में समय देना है। आयुर्हरति वही कौन सा उद्यन्य स्तयन न सो, उत्तम श्लोक की वार्ता में जो समय जाता है वो समय सार्थक है। तो कौन माता पिता, कौन क्या, वास्तव में कृष्ण है जो भी, वो देते हैं जीवन, इस बात को हमें समझना है, तभी हम भगवान के प्रति इस ये कृतज्ञता या समर्पण भाव से ही उनकी कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं, अहंकार या पंडिताई से नहीं। और ये काम साधु करते हैं, महद विचलनम, इसलिए उनका विचलन होता है कि इन गृहिण में लगृह आसक्त कुटुंब आसक्तों का उद्धार करने के लिए। और जिसका हृदय निर्मल हो चुका है ऐसे भक्तों के विषय में भी भागवत में लिखा है। अब पढ़िए, ये जो वर्षा ऋतु चल रहा है ना अभी, ये सावन भादो जो है ना, ये वर्षा ऋतु माना जाता है, और ये वर्षा ऋतु के वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा है, प्रत्यनंद शिखंडिन, जैसे बादल को देख के मोर नाचता है, ऐसे ही जो सदग्रस्त होगा ना वो साधु को देख के नाचता है कि आज मेरा गृह पावन हो गया है, क्योंकि आज आज कृष्ण ने मुझे अपना समझा कि उसके प्रेमी को मेरे घर भेजा। ये संस्कृति है। तो नंद बाबा कह रहे हैं कि हे गर्गाचार्य, आप जैसे साधुओं का घूमना फिरना, हम जैसे घर गृहस्थियों के फंसे हुए जीवों का उद्धार करना होता है, मांगना लेना देना कुछ नहीं होता, ये तो आपकी करुणा है। हेतु श्रील प्रभुपाद गए अमेरिका, आज 50 वर्ष गोल्डन जुबिली इस्कॉन वर्ल्ड ग्लोबली सेलिब्रेशन हो रहा है, किस लिए गए? कुछ लेने उन लोगों से? अरे वो लोग तो सब यहां से छीन के चोर के ले गए थे। भारत गुरु है, हमेशा देना सिखाया। बोले जो असली आइटम है वो तो आप छोड़ गए थे, प्रभुपाद बोले ये भी देने आया हूं तुमको। हमारा मेन हीरो कोहिनूर नहीं है, मेन हीरो हमारा गिरधारी है, वो तुम छोड़ के गए। तुम तो कांच लेके चले गए, असली हीरा आप देने आए हैं हम। असली हीरा है हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे, तो वो देने आए हैं आप। इसीलिए 50 नंबर श्लोक की कलम व्याख्या कर रहे थे, क्योंकि गोल्डन जुबिली इस्कॉन सेलिब्रेशन कर रहा है, और प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया है, इसके पीछे 7 उद्देश्य है, उसमें एक महत्वपूर्ण 4 नंबर का उद्देश्य है कि पूरे मानव समाज को श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के शुद्ध संदेश शिक्षाओं को पढ़ाया जाए सिखाया जाए। इसलिए इस्कॉन है, मंदिर इसीलिए बनाया गया कि ऐसी कथाओं चलती रहे, ऐसे कीर्तन होता रहे। ताकि मानव समाज का महाउत्थान मंगल कल्याण हो, और यही तो जीवन है। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगवान गीता में चतुर्श्लोकी में कहते हैं, पढ़िए उसका तात्पर्य, ये दसवें अध्याय का नौवां श्लोक है, मत चित्ता मतगत प्राणा बोधि अंत परस्पर। उसके तात्पर्य में प्रथम लाइन में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्तों का लक्षण कृष्ण इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जो कृष्ण की कथा का श्रवण और कीर्तन उसके अलावा कुछ नहीं करता। पढ़िएगा तुष्यंती च रमंती च, ये उनका जीवन होता है। इसको हिंदी में कहे दिन वो दिन नहीं, रात वो रात नहीं, पल वो पल नहीं, हे गिरधारी जिस पल तेरी बात नहीं। हमारे जीवन का कोई पल ऐसा न जाना चाहिए कि तेरा कथा कीर्तन या स्मरण के बिना चला जाए। और शुद्ध भक्त के हृदय में उसके शब्दों में उस कृष्ण कथा में इतनी शक्ति होती है कि हमारे करोड़ों जन्मों के जमे हुए पाप अविद्या वासना कामना को उखाड़ के फेंक देती है। आप लोग टीवी में एडवर्टाइज सुनते होंगे ना, वो पाउडर या डिटर्जेंट का आता होगा जिद्दी दाग, सुना है, सीखते है ना, जिद्दी दाग को भी निकालेगा। हमारे अंदर भी बड़ा जिद्दी दाग है जन्म जन्म का, और इसको निकालेगा कौन, ये कथा। ये सनत कुमारों ने कहा गोकर्ण उपाख्यान में, संसार करदम आलेप प्रक्षालन पटीयसी, ये संसार का जो कचरा जम गया है ना कामना वासना का, करदम मतलब कीचड़ मर्ड कादव गुजराती में गारो, जो जामी गयो छे। लेकिन संसार करदम आलेप प्रक्षालन पटीयसी, प्रक्षालन मतलब इस संसार का वासना को धोने में अगर कोई सबसे बड़ा साबुन सबसे बड़ा कोई वस्तु है तो यह हरि कथा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं रामानंद राय के चरणों में कि आप कृपा करिए, सार्वभौम ने मुझे कहा था और मैं इसीलिए यहां आया। तोमार मुखे कृष्ण कथा सुनीते हो यमन पुनरपि पाइए न तुम्हार दर्शन। मैं फिर से कब आप मिलोगे, अभी ये ब्राह्मण मुझे न्योता देने आया है, सुबह का समय था 10-9 बजे का, और ये ब्राह्मण मुझे मध्याह्न भोजन के लिए बुलाने आया है। संध्या भोजन या तो मध्याह्न हो गया था, भोजन हो रहा था, सुबह न हो तो मध्याह्न। मेरा एक ही इच्छा है तुम्हार मुखे कृष्ण कथा सुनीते हो यमन पुनरपि पाइए न तुम्हार दर्शन। फिर से आपका दर्शन मिलेगा तभी तो कथा अमृत मिलेगा ना, कब कब मिलेंगे बताइए ना। संस्कृत के आचार्यों ने लिखा है प्रेमे प्रियतमस्य कथा एव सुधा न सुधा सुधा लोके। ये जो दुनिया में लोग अमृत की बात करते हैं सुधा की, वो सुधा वो अमृत अमृत नहीं है, जिससे हम प्रेम करते हैं उस प्रियतम की कथा ही उस प्रेमी के लिए अमृत है। वो अमृत तो बेकार है उनके लिए, पर ये बोल रही है राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के भाव में। और उसको सुनना क्या है, विशाखा से जो मथुर विरह में जब ठाकुर जी मथुरा गए तब यही होता था, और यही आस्वादन के लिए गौर रूप लिया है ना कृष्ण, और इसलिए ये लालसा बनी है हृदय में कि आपके मुख से सुनना है कब मिलेंगे। राय ने कहा, राय कहे आईला यदि पामर शोधिते, प्रभु आप मेरे जैसे पामर मतलब सदाचारहीन सोचनीय दयनीय व्यक्ति एकदम ऐसे उनका दैन्य है, बड़े महान है लेकिन साधु तो साधु है। इस बार हम वृंदावन गए तो महाराज जी एक प्रसंग सुना रहे थे, शिक्षा दे रहे थे महाभारत का, उसमें व्यास जी ने लिखा है आत्म प्रशंसा करना ये आत्महत्या है। श्लोक है उसके ऊपर फिर कथा भी है, लेकिन वो कहना नहीं लेकिन मैसेज होता है। कोई व्यक्ति महान है लेकिन भले वो गुण है वही बोले फिर भी वो क्या है, ओवर में बोले जो उसमें है सामर्थ वही वक्तव्य देना भी स्वयं की प्रशंसा है, और स्वमुख से करना क्या है आत्मा। इंद्रो अपी लघुताम जाति स्वयं प्रख्यापिते गुणे, इंद्र है लेकिन वो खुद कहे कि मैं इंद्र हूं और मैं स्वर्ग का राजा और अपना अपना, तो उसी समय वो हीन हो जाएगा। भले वो बात गलत नहीं बोल रहा फिर भी उसकी महिमा या उसकी प्रशंसा नहीं की जाएगी, ये नीति है। और जहां भक्ति है ना नीति और मुक्ति तो उनकी दासिया बन के रहती है। जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, जहां भक्ति है ज्ञान वैराग्य अपने आप आने हैं। राय हृदय भक्ति से लबालब भरा है और भक्ति का वाहन है दैन्य, भक्ति चलती है दैन्य पर, तो वाहन हृदय में दैन्य भरा है। और इसीलिए कहते कि आप हम जैसे पामरों का अगर उद्धार करने के लिए आए हैं ना तो फिर दर्शन मात्र शुद्ध न है मोर दुष्ट मन, मुझ जैसे दुष्ट मन ऐसे दर्शन से शुद्ध नहीं होगा। अगर मेरा उद्धार करना है तो 5-7 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, 1-2 दिन नहीं कम से कम 5-7 दिन रखिए तबे शुद्ध है, तब 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 शुद्ध होगा ऐसा मुझे आशा है। यद्यपि विच्छेद दोहार सहने न जाए ऐसा बोल के रामानंद राय पालकी में चढ़ गए, पालकी में पालकी की ओर ब्राह्मणों की ओर आगे बढ़े और इधर ब्राह्मण के साथ चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े। कविराज महानुभाव कहते विच्छेद दोहार अन्य अन्य सहित न जाए, दोनों एक दूसरे से जुदा होना चाहते नहीं थे लेकिन क्या करें जाना तो था ही जुदा तो होना ही पड़ेगा। तथापि दंडवत करी चलीला रामा राय, इसलिए रामानंद राय ने दंडवत किया और वो चलते बने, रामानंद राय चल दिए। लेकिन कविराज जी कहते चल तो दिए प्रभु जाय से ही विप्र घरे भिक्षा कैला, उस ब्राह्मण के यहां जाकर चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद लिया। दुई जनार उत्कंठाए आसी संध्या हैला, और इस तरह प्रसाद लेकर एक दूसरे को मिलने का, उधर रामानंद राय भी घर गए प्रसाद लिए लेकिन मन कहां था गौरांग के पास, इधर चैतन्य महाप्रभु भी वहां गए प्रसाद लिया लेकिन कब ये समाप्त हो कि मैं रामानंद राय से मिलू, मन में ऐसी उत्कंठा जैसे कुछ शुद्ध भक्तों को होती होगी कब कब कथा चालू हो कब सुने कब ये अवसर मिले, महाप्रभु भी इसी मूड में थे। प्रभु स्नान कृत्य करी आछे न वसिया एक प्रित्य संगे राय मिलिते चलीला मिलिते आसिया, चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया। शिल प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि वैष्णव बाह्य सोच भी ध्यान रखता है और स्नान जरूर करता है, अशुद्धि चलेगा नहीं ना। प्रभु स्नान कैला और आकर जहां मिले थे वहां पहुंच गए उस ब्राह्मण की जो जगह निश्चित किया गया, और उधर राय रामानंद राय भी फ्रेश होकर तैयार होकर आ गए। और जैसे ही रामानंद राय आए उसको क्या हो गया था मालूम है, शाम हो गया था, संध्या संध्या ही लाया ना शब्द, संध्या तो हो ही गया था स्नान करके प्रसाद लेते, तो फिर संध्या के बाद मतलब इवनिंग एंड हो रहा था नाइट प्रारंभ हो रहा था मतलब यही समय 7:30 ये समय क्या है रात्रि हो गया ना, अभी इवनिंग हो गया खत्म 7 बजे इवनिंग समाप्त हो जाता है, नाइट वर्णन आने लगता है 8-9 बजे के बाद, यही यही लगभग समय था प्रल, ये कथा से शब्दों से ऐसा लग रहा है। नमस्कार कैल आकर रामानंद राय ने प्रणाम किया, प्रभु दार कैला आलिंगन, और जैसे ही उसने प्रणाम किया सिम उठाया और कैसे कर दिया। इस पर हमारे विद्वानों ने विचार किया है कि चैतन्य महाप्रभु ने फिर से आलिंगन किया जबकि सुबह किया था, कलम कथा सुनाए थे, ये आलिंगन के पीछे क्या रहस्य है या क्या है, इसके पीछे रहस्य है कि आलिंगन करते ही जो प्रथम श्लोक में प्रार्थना की गई थी कि राय रूपी मेघ में भक्ति रस सिद्धांत को गौर समुद्र ने भर दिया, ये हालिंगर करते ही सारा रस प्रेम तत्व सिद्धांत राय के हृदय में कॉपी पेस्ट, आज की भाषा में ट्रांसफर सीधा छूते ही। और यहां आलिंगन करने से छूते ही चला गया, ये भी एक बाह्य संदेश शिक्षा मात्र है। वस्तुतः वास्तविकता क्या है, चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय को परिपूर्ण रस तत्व सिद्धांत में करने के लिए आलिंगन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जहां तक वस्तु महाप्रभु के शक्ति के प्रभाव की बात है वो तो संकल्प करे सोचे कि इसमें ज्ञान हो जाए, हो जाएगा, है ना। भगवान में तो सामर्थ्य है ना, ब्रह्मा को ज्ञान दिया तो क्या प्रवचन थोड़ी किया लंबा लंबा, एक संकल्प किया, उनके संकल्प से सृष्टि हो जाती है, क्योंकि भगवान का सोचना और करना न तस्य कार्य करणम च विद्यते, भगवान को कोई करना नहीं पड़ता, वो सोचते ही हो जाता है। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मन्ति, है ना। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं ईश्वर है, और यह अपने सोचने से हो जाए, अपने श्री विग्रह का आलिंगन करके रामानंद राय को परिपूर्ण कर दिया। अरे ये तो पूर्ण स्वयं अवतारी कृष्ण की बात आप कर रहे हो, इसी कृष्ण का अंश अंश नारायण जब पृथ्वी पे आकर उस ध्रुव को अपना शंख छुआ है, भागवत में कथा है ना, चौथे स्कंद के नवे अध्याय का चौथा श्लोक, सतम विवक्षंत तद्विदम हरि, बस क्या किया, कृपामयेन कंबुना कपोले, बस कृपा से अपना कंबू मतलब अपना जो शंख था नारायण शंख लेके आए थे और ध्रुव के गाल में टच कर दिया। मैत्री जी कहते कृतानुकंबु ब्रह्ममयेन कंबुना, वो शंख का विशेषण क्या है, ब्रह्ममय, ब्रह्म शब्देन वेद, ब्रह्म शब्देन परम तत्व ज्ञान, और वो पूर्ण ज्ञान से भगवत स्वरूप शक्ति समर्थ शंख था, जैसे ही छुआया स्पर्श बालम कृपया कपोले, वो ध्रुव को सारे वेदों का ज्ञान पूर्ण रूप में अनुभव हो गया, केवल याद नहीं रह गया, तोती वाली बात नहीं है, मिट्टू बोलो राम राम ऐसी बात नहीं है, अनुभव साक्षात्कार, रट्टा वाली बात नहीं है कि आ भाई 10 बार बोला श्लोक याद हो गया, अब श्लोक कहना क्या चाहता है पता नहीं, ऐसी वाली बात नहीं है। श्रीधर स्वामी ने लिखा है, फिर ध्रुव ने स्तुति किया जो एक 12 आदित्यों के समान प्रकाश देता था पूरे वैष्णव विद्वत जगत को, जरा सारा तत्व जान लिया ध्रुव केवल भगवान के छूने से। अब हमारा आपके चरणों में इन सारे प्रसंगों से एक मैसेज निवेदन है कि भगवान के संकल्प से कोई पूर्ण ज्ञानी बन जाए, भगवान के आलिंगन से प्रेमी बन जाए, या भगवान के शंख से कोई प्रेमी ज्ञानी बन जाए पूर्ण, वे भगवान के नाम में भी कोई अंतर, वे भगवान की कथा में भी कोई अंतर, जो शक्ति भगवान में है वो शक्ति भगवान के शंख में है, या वो शक्ति भगवान के शरीर में विग्रह में है, वही शक्ति भगवान के नाम में है, वही शक्ति भगवान की कथा में है, क्योंकि अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, चैतन्य रस विग्रह है ना, और महाप्रभु ने स्वयं कहा नाम नामकारी बहुधा, अगर कोई प्रेम और श्रद्धा से अपने कान से और अपनी जीवा से उसी महामंत्र के कृष्ण के नाम का स्पर्श कराए तो वो भी ज्ञानी और पूर्ण बन सकता है, लेकिन उस तरह का विश्वास और आदर होना चाहिए। हम सब साधन भजन में तो लगे हैं, कमी कहां है, हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में, क्योंकि भगवान का नाम अगर भगवान के समान शक्तिमान है तो फिर उनका आश्रय उनका आधार उनका स्पर्श करने पर क्यों नहीं प्रभाव होगा, होगा, पत्थर भी तैर जाते हैं मनुष्य की क्या बात करें, रामायण कहती है ना राम नाम से तो पत्थर तैर जाते हैं, तो फिर मनुष्य का क्या कहना जिसके अंदर ब्रह्म निवासित करता है। इसलिए हम सभी भक्तों को चाहिए कि कलयुग का ये परम साध्य वस्तु जो है कृष्ण प्रेम रस, और इसका अनुभव उसकी निरपराध सीमा तक पहुंचना चाहते हो तो नियमित निरपराध प्रेम और श्रद्धा से महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सरल साधना विधि है जो प्राय हम सभी भक्त कर सकते हैं सरलता से। प्रभु स्नान करी, सब स्नान करके दोनों तो बैठे ही है। नमस्कार कैला राय प्रभु कैला लिंगन, दुई जन कथा कहे वसी रह स्थान। अब दोनों भगवान चैतन्य और रामानंद राय, राधा कृष्ण मिलित विग्रह और विशाखा कथा करने बैठे हैं। लेकिन एक बात यहां लिखते कवि राय, रह स्थान एकांत स्थान में, पब्लिक में नहीं, एकांत स्थान में। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते कि कृष्ण की जो गुह्यतम लीला ये कथाएं जो है वो पात्र अनुसार देश काल स्थान के अनुसार ऐसे स्थान में होनी चाहिए। अगर सामान्य जनता सब बैठी है तो वहां पर गीता के सरल सिद्धांतों को शिक्षाओं को निवेदन होना चाहिए। लेकिन उस स्तर के भक्त हो, प्रकाशन के सामने देखिए महाप्रभु ने तत्व वर्णन किया, अब रामानंद के साथ रस वर्णन कर रहे हैं, और सामान्य जनता के साथ चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम सामान्य जनता के सामने केवल संकीर्तन जप होता था एकांत स्थान में बैठे। तब आप में से कुछ भक्तों के मन में यह प्रश्न हो सकता है, तो फिर आपने क्यों बोर्ड लगाकर जमा किया है सब? अब ये चर्चा एकांत ही वस्तु है तो फिर हो सकता है ना, प्रश्न तो होना चाहिए, लेकिन प्रश्न के पीछे भाव शुद्ध होना चाहिए। एक बात समझने लायक है, प्रश्न ही उत्तर है। गीता में भी प्रश्न उत्तर है, भागवत में भी प्रश्न उत्तर है, यहां भी महाप्रभु और राय के बीच में प्रश्न उत्तर ही होगा, लेकिन भाव सीखने समझने का सुनने का, कमी देखने का दोष निकालने का निंदा करने का भाव नहीं होता था जैसे होता है, राइट? और आप जैसे मान लो समझ लो प्रभुपाद के तात्पर्य को या इस श्लोक को, इतना ही नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रभुपाद जो तात्पर्य लिखे है और आप समझ लो वही प्रभुपाद लिखे, कि उससे प्रभुपाद की बुद्धि आपसे ऊपर है कि नहीं, ये मानते हो कि नहीं, पहले ये बताओ कि आप जो समझ लिए तात्पर्य वही पूर्ण है, क्या कहना है आप लोगों का? हमें तो प्रार्थना करनी है भक्तिवेदांत स्वामी के चरणों में कि हम तो कुछ नहीं समझते हैं, आप कृपा करके कृपा करो कि थोड़ा बहुत ही सिंधु में से बिंदु भी हमें मिल जाए तो हमारा धन्य हो जाए जीवन, है ना? और हम ये सभी मानने की प्रभुपाद जो बोले हम समझते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत सावधानी से। इसीलिए शास्त्र होते हुए भी गुरु की जरूरत इसीलिए, नहीं तो अपराध में रहकर या अहंकार में आकर हम अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे और ना दूसरों का होने देंगे। एकांत रह शब्द का अर्थ क्या कर लिया? जहां कोई ना हो, जहां अकेले हो, इतना ही है। तो फिर एक बात बताइए, ये नैमिषारण्य में 88,000 के सामने क्यों प्रवचन हो रहा है रासलीला का? अगर एकांत स्थान में ही होता तो शौनक और दोनों को ही बोलना चाहिए, बाकी सबको बोलना चाहिए प्रसाद खाओ कीर्तन करो, 88,000 क्यों वहां बैठे हैं? आप क्या जवाब है बताओ? एक में ही जिसका अंत हो, 50 भले बैठे हो लेकिन सब प्रेमी हो, सब शुद्ध हो, भक्त हो और सबके अंदर जानने की लालसा हो, तो 50 होते हुए भी एक है, वो हजार होते हुए भी सबको क्या जानना है, कृष्ण की कथा। सबको क्या जानना है, चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी क्या पूछे, महाप्रभु जी क्या लीला किए, ये जानना है। ऐसे हजार भी बैठे हो तब भी एक है, आशय एक है, कृष्ण भक्ति जानना है, कृष्ण सेवा समझना है, आशय एक होना चाहिए। और वरना दो ही बैठे हो लेकिन ये दिल्ली गाड़ी जा रहा है और ये विशाखापट्टनम की ओर है, तब तो ठीक नहीं है ना। कभी कभी क्या है, अभी इसमें तो नहीं लेकिन गीता का सिद्धांत बोलना होता ना, तो मैं कई बार हमारी कथाओं में इसको व्यक्त किया हूं। प्राय लोग वो दत्तात्रेय का श्लोक बोलते हैं, दत्तात्रेय ने बोला बहुना कलहो वासो, वो जो कुमारिया ही वो कंकण, वो जो दत्तात्रेय एक घर में गए अवधूत, तो वहां पर घर में माता पिता नहीं थे, एक लड़की थी। तो दत्तात्रेय गए, देखा तो वो लड़की शालीन थी, मतलब संस्कारी थी, अच्छे कुल की थी। तो कोई साधु आए तो स्वागत करना, प्रणाम करना, ये संस्कार थे उनके। और साधु को कुछ भी जल या भोजन निवेदन करना, जो भी घर में हो, नहीं है तो बनाना दूध वगैरह या कुछ भी सेवा में, ऐसे कुछ संस्कार थे उसमें। लेकिन साधु को पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारे, क्योंकि सही साधु क्या है, खाने पीने लिए आते नहीं, हमारी तरह तो ऐसे घूमते रहते हम जैसे लोग तो, लेकिन सही साधु खाने पीने के लिए तो जाता नहीं। कुछ साधु तो लड्डू पेड़ा के लिए घूमता रहते, चारण्य अठानी कवर बोर मिल जाए थोड़ा काम चलता बने। लेकिन जो असली साधु होगा वो तो इसके लिए घूमता नहीं किसी के घर, और ऐसा कोई करे तो वो चाहता भी नहीं, वो तो चाहता कि भाई आप कुछ भजन करो, भगवान की सेवा में लगो, हमारी नहीं। सही तो साधु तो यही चाहता है ना, ताकि इसको पता भी। और तो घर वाला क्या करता है गृहस्थ, कि साधु तो नहीं चाहता है उनकी सेवा करे, महाराज आते नहीं चाहते, लेकिन हमारा धर्म बनता है ना कि साधु की सेवा करे गुरु की, ताकि उनके पहले ही आने से पहले ही रेडी रहे, उनको पता ना चले तैयार कर दे, नहीं तो वो तो देखेंगे तो क्या कहेंगे, रहने तो ऐसे ही कहेंगे ना, साधु तो है ना। और कुछ भगत तो ऐसे होते पूछते महाराज ऐसा करे, वो थोड़ी कहेंगे, वो तो कहेंगे हाँ भाई रहने दो, तो देखो महाराज मना किया ना, तारा हो समझे ना करो। कुछ बातें शिष्य को बहुत एडवांस बनना पड़ता है, क्योंकि गुरु वो गुरु अपनी सेवा में लगाएंगे लेकिन हमें करनी है, तो सावधान बनना पड़ेगा ना। ऐसा ही था यहाँ पर, वो क्या है, कुछ मसाला पीस रही थी दूध में डालने के लिए, दूध में मसाला डालते हैं ना आजकल जो डालते हैं, वो नहीं नेस्कैफे नहीं, ब्रुकबॉन ताजा वो कुछ नहीं, वो कुछ था इलायची या पिस्ता वगैरह पीस के डालेंगे दूध में, जो वस्तु जिस मात्रा में हो उनसे भी ज्यादा रिफ्रेश शुद्ध करना, इसको बुद्धिमान कहते हैं। हम लोग क्या खाना पीना कर रहे हैं, जो ऐसे ही ऐसे एकदम अशुद्ध है उसमें और खराब कर रहे हैं। आज दूध शुद्ध मिलता नहीं, उसमें चाय डाल के कॉफी डाल के और कचरा कर रहे हैं। अरे दूध शुद्ध ढूंढना चाहिए और उसमें पिस्ता बादाम डालना और बेस्ट बनाओ, इसको बुद्धिमान कहते हैं ना। ये पहले हमारे भारतीय संस्कार ये थे, गांव के वस्तु शुद्ध थी ऊपर से और शुद्ध बनाते थे केसर डाल के, और आज वस्तु अशुद्ध है ऊपर से और अशुद्धि डाली जा रही है, और इसीलिए इतना प्रवचन सुनते भेजे में जाता नहीं, क्योंकि भेजा खराब है। ऐसा खाना खाया है कि भेजा खराब हो गया अभी, क्योंकि जैसा अन्न ऐसा है ना, वो हमारे प्रभुपाद जी ने लिखा गीता में, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होगा तभी तो शुद्ध होगा ना, इसलिए कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए। कृष्ण बड़ा दयामय करी बारे जीवा जाए, सो कृष्ण धन्य दिलो भाई, हमें शुद्ध करने। भक्ति ठाकुर ने गाया प्रसाद सेवन करीते हय सकल प्रपंच, तो फिर वो साधु को पता, क्योंकि जोगेगा तो कहेगा कि नहीं रहने तो नहीं करना है मैं जाता हूं, इसलिए मसाला पीस रही तो चूड़ी पहनी थी उसने, चूड़िया पहनते ना, तो पिसने पर वो खनखन हो रहा था, इसने सोचा साधु, इसलिए उसने निकाल दी, दो रखी तो पिस रही, फिर भी दो होगी तो भी साउंड तो होगा, इसलिए वो भी निकाल दी ताकि एक से आवाज। और ये बात जो मेहमान आए थे उसके लिए हो रहा था, ये साधु ने मतलब अवधूत अर्थात दत्तात्रेय ने खिड़की में से देख लिया कि वाह क्या संस्कार है लड़की के, और उन्होंने ये शिक्षा ली, 24 गुरु में से एक शिक्षा ली कि एकांत में ही भजन होगा। जिस साधु को भजन की पराकाष्ठा में पहुंचना है उसको क्या करना चाहिए? एकांत। और ये बात सही है, ये एकांत हमें भी चाहिए। मंगला जैसे ही खत्म हो, अगर हमें जब पूरा करना है तो कैसे बैठना पड़ेगा? अकेले। अकेले बैठने के लिए मतलब क्या करते हो आप गिरधारी मंदिर में? 50 लोग जप करते हो फिर भी अकेले हो, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे हैं? जप कर रहे हैं। समझ में आती है एकांत क्या होता है? अब वहां प्रवचन नहीं हो रहा है, नहीं तो डबल हो जाएगा। अब यहां पर सब प्रवचन सुन रहे हैं, ये क्या है? एकांत, एक ही भक्ति हो रहा है, श्रवण। वहां एक ही भक्ति हो रहा है, भले आदमी आदमी से मतलब नहीं है, काम क्या हो रहा है, आशय क्या पूरा हो रहा है। वो 50-100 होते हुए भी है कि क्योंकि सब जप कर रहे हैं। और 50 लोग यहां से बाहर निकलो, सामने वाले के हाथ में भी माला है, आपके हाथ में भी माला है, लेकिन एकांत नहीं। ये वाली शिक्षा वहां लागू होगी। केम छो, कब आए? तो अभी शाम को क्या है? राम 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 राम। बारिश आएगा तो मैं नहीं आएगा, किसी किसी राम 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 राम। कल संडे का क्या प्रोग्राम है? राम 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 राम। बताए कि नहीं बताओ? अभी 50 यहां बैठे फिर भी एकांत है, और वहां 2 होते हुए भी एकांत नहीं है। सही है कि गलत बताओ? तो फिर इस तरह की जो मतलब श्लोक वही है, लेकिन किस स्थान पे, किस व्यक्ति के लिए क्या बात है, आप अपनी बुद्धि से मत बोलो, नहीं तो फंस सकते। इन लोगों के लिए क्या उत्तर है जानते? जो लोग कहते कि बस एकांत में भजन करो, हमारा ये संकीर्तन आंदोलन एकांत में आप करोगे ना, को कहेगा नहीं यहां तो 50-100 लोग जॉब करते हैं, ये भी हरे कृष्ण बोलता है, मुझे डिस्टर्ब होता है, मैं क्या करूंगा, मैं कोने में जाके या अपनी रूम में जाके एकांत में माला करूंगा, आधी माला पे देख लीजिएगा उसका एकांत। सही है कि गलत है? लेकिन कुछ भक्त होंगे कि एकांत में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, और कुछ होंगे मेरे जैसे कि एकांत में आधे में डाउन। अब आप उस दोनों को एकांत को एक में नहीं माप सकते, वो एकांत में ही भजन उसका अच्छा है और इनका एकांत में नहीं अच्छा है। सही बात है? अब बात वही है, लेकिन पात्र अलग होने के कारण, स्थान होने के कारण एक मैसेज नहीं है। उनके लिए एकांत सही है, क्योंकि उनका भजन उनका जब ज्यादा है, उसे अच्छा करना है तो वो करेगा ऐसा, और वो कर सकता है तो उनके लिए ठीक है बैठना, लेकिन हम लोगों के लिए ठीक। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते थे, ये संकीर्तन आंदोलन है, यहां साथ में कीर्तन करो, साथ में श्रवण करो, साथ में सेवा करो, आप टिक पाओगे, नहीं तो हरिदास ठाकुर का अनुकरण करोगे तो आप मायादास हो जाओगे, हरिदास रहोगे नहीं। हम हरिदास है, लेकिन हरिदासों के बीच में हरिदास है, वरना अकेले हरिदास होते हुए भी हम क्या दास है आप जानो? तो हम हरिदासों के साथ हरिदास है, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है भक्तों। तो भी प्रैक्टिकली बात हम करें इसको, तो ये संकीर्तन, फिर ये चूड़ी वाला उदाहरण है ना, इसको हम मॉडिफाई करते हैं। हम कहते हैं कि अरे आप कहते हो कि एक ही चूड़ी पहनना, चूड़ी नहीं पहनना, अकेले रहना, हमारी भक्ति विधवा नहीं है। जो सौभाग्यवती नारी होती है वो क्या पहनती है? मेरे हाथों में 9 बहुत चूड़िया है भाई, एक दो क्या चूड़ियों की कमी थोड़ी है। तुम्हारे लिए भले वो होगा, लेकिन हमारे लिए, हम लोग तो साथ में नाचेंगे, साथ में गाएंगे। इसलिए इस्कान के मंदिर में कुछ लोग साधु आते हैं ना, कुछ योगी या अलग अलग, समझ नहीं पाते वो लोग, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, 100 लोग बैठे एकांत में, ध्यान लगाओ, बोलना नहीं, पर हम लोग कहते हरि बोलो वो लोग कहते बोलना नहीं, और हम लोग कहते चुप मत रहो चैंट तो उनकी समझ में आता नहीं, क्योंकि उन लोग की विधवा साधना हो जाने। यहां तो हमारे श्याम सुंदर के कीर्तन चूड़ी बजेगा ही बजेगा, करताल बजा ही बजेगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्णा यज्ञ संकीर्तना हरे हरे हरे। इतना आवाज आया ना अभी, फिर भी एकांत था। उन लोगों को यह समझ में आएगा, वो लोग हमें समझते एकांत मतलब स्मशान जैसी शांति है। चले जाओ जाफरी के पास मीरा रोड में, शांति है ऐसी स्मशान वाली शांति हमें चाहिए नहीं, हमें संकीर्तन चाहिए। तो भक्तों यहां पर एकांत है, कैसा एकांत, सब अगर दीक्षित है या दीक्षा लेना चाहते हैं, सब ये चाहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु की कथा सुने, भागवत के कुछ श्लोक सुने, तो ये आप 500 बैठे हो ना फिर भी एकांत है। और इसको नहीं समझने वाला व्यक्ति ये बोले कि देखो वहां पर एकांत था, ये लोग 100 के सामने बोल रहे हैं, उनको हम प्रणाम कर सकते हैं, बाकी कुछ कह नहीं सकते, उनको यमराज जी कुछ कहेंगे जब कहना होगा, ओके क्योंकि वो अपनी बुद्धि से माप रहा है। कोई भी वस्तु जो आचार्यों ने बोली है परंपरा से, उसका यथार्थ वर्णन करना, इसमें फिर 1, 2, 25, 50 की बात नहीं है। वहां पर बैठा हुआ जो समाज है, हो सकता है इसमें 2-5 नए हो, लेकिन फिर भी वक्ता की अपनी कुशलता होने पर वो चिंता भी नहीं रहती, क्योंकि वो हमारा सिद्धांत या वो हमारी शिक्षा को, जैसे बच्चे को दवाई पिलाना होता है तो घोल के कर ही देता है, चतुर वैद्य होगा तो वो चिंता नहीं। लेकिन हम पूरा ना सुनते हैं ना समझते हैं, थोड़ा सा सत्संग में आ जाते हैं और एक वाक्य को पकड़ के बाहर जाके सबके सामने कमेंट करते हैं, ऐसा बोला, ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तू बैठा था क्या 7 दिन से इधर, तब बोल पहले, पहले से पूरा क्या है कुछ देखना नहीं, और अपने से ही कमेंट नहीं चलेगी, राइट, पूरा समझना चाहिए ना, पूरा मैच देखना पड़ेगा ना, एवरेज लेना है। आप रिपोर्ट कराते हो ब्लड का तो एवरेज रिपोर्ट समझते हो। इसी तरह भक्तों मैं इस बात का इसीलिए इतना विश्लेषण कर रहा हूं कि हम अपराध में न फंसे और रस तक पहुंच पाए, नहीं तो फंस जाएंगे। महाप्रभु एकांत में ले गए क्यों, क्योंकि उसकी एकांत की वो बड़ी ऊंची पात्रता थी, नो डाउट, लेकिन बात तो तत्वों की हो रही है। जय श्री राधा गिरिधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, गौरांग की जय। साध्य साधन तत्व के विषय में जो चर्चा विचार विमर्श होने वाला है, उसके लिए एकांत स्थान जरूरी है। एकांत स्थान का अर्थ क्या है, जहां पर बाह्य आवाज डिस्टर्बेंस ना हो, लोगों की आने जाने की, क्योंकि कथा में विक्षेप होता है ना, बाहर साउंड दूसरा बज रहा है, जैसे आप परसों यहाँ कथा होगी तो गणपति बाबा मुरिया होगा, डिस्टर्ब होता है ना कुछ ना कुछ बाह्य साउंड, या फिर कुछ आते जाते लोग रहते हैं, तो इसलिए कुछ विशेष चर्चा करना था, इसीलिए इस तरह का एकांत जरूरी है। तो इस तरह बहुत सारे विचार है भक्तों एकांत में, लेकिन हम यहाँ प्रभुपाद के चरणों में और सारे भक्तों के बीच और सभी भक्त यहाँ भक्ति सीखने के लिए चैतन्य चरितामृत रस लेने आए हैं, तो यहाँ कोई इस तरह का चर्चा करना ये अच्छा है, इसमें कोई गलताई दुर्भाव नहीं है, ये आप समझिए, बस मेरा ये निवेदन है। नहीं तो इस बात को लेकर कहे नहीं ये चर्चा तो दो के बीच में ही करो, बाद में मत करो, तो ये फसावट हो जाए। प्रभु कहे श्लोक साध्यर निर्णय, प्रभु कहे पढ़ श्लोक। अब देखिए चर्चा चालू हो रही है, मैंने जो प्रवचन पहले दिन में लाना चाहिए 4 दिन के बाद हम यहाँ पहुंचे, लेकिन जो तात्विक चर्चा है उसको सात्विकता, तो सात्विकता के लेवल पे तो लाना पड़ेगा ना हम लोगों की चेतना को। गीता में श्लोक है सत्व संजायते ज्ञानम, ज्ञान ग्रहण करने के लिए पहले कहाँ होना पड़ता है, सत्व गुण में स्थित होना पड़ता है, रजस तमस में ज्ञान ग्रहण होता, चेतना को सात्विक बनाना पड़ता है, शुद्ध बनाना पड़ता है, तब कुछ पात्रता प्राप्त होने के बाद कुछ वस्तु मिलती है ना। इसलिए बहुत सारी सिद्धांतिक आनंद कीर्तन स्मरण हमने किया 4 दिनों में यहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक एक श्लोक में एक एक शब्द में बड़ी बड़ी बातें हैं। देखो यहां कहा गया प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्य निर्णय, साध्य वस्तु जीव का क्या है, सर्वोच्च लक्ष्य जीव का अर्थात हम सब भक्तों का क्या है इस विषय में कोई एक श्लोक बताओ। इसका हिंदी ये होगा ना,
प्रभु कहे श्लोक पढ़ साध्यर निर्णय, कहे पढ़ श्लोक प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्यर निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति हय, कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति हय।
एक श्लोक बताओ, मतलब महाप्रभु ये कह रहे हैं कि जीवों का सर्वोच्च धर्म साध्य जो भी हो निर्णय वो बताओ, लेकिन अपने मन से मत बताओ, श्रुति से शास्त्रों से कोई श्लोक का प्रमाण देके बताओ। जैसे आपको भी घर गृहस्थी में बिजनेस में कोई पूछते होंगे, प्रभु जी आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार, आप बोल देंगे हाँ, लेकिन ऐसा कोई बोला पहले, ऐसा कहीं लिखा गीता में? ये हम देखते पढ़ते हम तो कहते बस कर डालो, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहते हैं कि वो कोई भी बात बोलता है वो शास्त्रों से प्रमाण के साथ होती है। प्रभु कहे श्लोक पढ़ो, लेकिन कैसे श्लोक, मतलब श्लोक शास्त्रों में होता है। कोई भी बात बोलो शास्त्रों से बोलो, ये बात है कहने की बात। अपने मन से मनगढ़ंत अंधश्रद्धा में या किसी ने बोल दिया, इसने बोल दिया इसलिए, ऐसा चलेगा? यह हमारा सनातन धर्म है भारत का, और भारत का सनातन धर्म ने विद्वत शास्त्रज्ञ पुरुषों की पालकियों को उठाया है। कोई अंधश्रद्धालु व्यक्ति कुछ भी बकवास कर दे ऐसा चलेगा नहीं। हाँ, ऐसे संप्रदाय भी चल चुके हैं, कलयुग में तो चल ही रहा है, लेकिन जो वास्तविक संप्रदाय है वो लोग ऐसा चलेंगे। कोई भी बात बोलो उसके पीछे दार्शनिक, व्हाट इज द फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, उसके पीछे दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है, ये पहले रिसर्च करना पड़ेगा। नहीं हमारा दादा बोला था, हमारे गांव में वो गुरुजी बोले थे, अरे वो व्यास जी क्या उतार है तुम्हारे दादा, क्या हैसियत रखते हैं भाई, ये बोला था वो बोला था, क्या है सब? प्रभुपाद जी सीधा बोलते थे, गीता में व्यास जी ने लिखा श्री भगवान उवाच, जो कृष्ण बोला वो बोलो, व्यास जी बोले वो बोलो, वाल्मीकि बोले वो बोलो, आप और हम क्या है। इसीलिए सनातन गोस्वामी को वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा 2:24-2:105 आप देख सकते हो, सर्वत्र प्रमाण दिबे पुराण वचन, सनातन तुम कोई भी बात कोई भी सिद्धांत लिखो लिखो छोटा से छोटा उसके पीछे श्रुति का शास्त्र का कोई ठोस प्रमाण दो। कभी लोग विद्वान लोग तो ही मानेंगे, मूर्ख लोग तो कुछ भी मान लेंगे। विद्वान उसे कहते हैं कि वो मान कहां लिखा है भाई, और प्रमाण, अभी इसमें मैं चला जाऊंगा ना तो एक लंबा चैप्टर है वो भी, प्रमाण मतलब क्या, प्रूफ हमारे अंग्रेजी का अनुवाद किया जाए, लेकिन संस्कृत में प्रमाया करणम इति प्रमाणम, प्रमा मतलब भगवत विषयिनी विद्या, और उसका जो ग्रहण करने का साधन है वो है प्रमाण, और वो प्रमाण हमारे मनु महाराज ने और श्रीमद् भागवत ने चार मुख्य बताए, प्रत्यक्ष अनुमान ऐतिह्य और शब्द, लेकिन श्रीपाद जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में 10 प्रमाण के प्रमाण बताए, आर्ष अर्थापत्ति संभव चेष्टा, ये चार तो है उसके अलावा भी 8 प्रकार के, लेकिन सारे प्रमाणों में गरिमा केवल शब्द प्रमाण की है, श्रुति प्रमाण की, क्योंकि अनुमान फैल प्रत्यक्ष फैल, इसमें सब दोष है। क्या दोष है? अपूर्ण इंद्रिया, ब्रह्म प्रमाद कर्ण पाटव, जिसको प्रभुपाद जी ने सिखा समझाया सरल भाव में, गलती करना इंद्रियों को, त्रुटि इंद्रियों की, या मोह में आ जाना। लेकिन शास्त्र जो है वो भगवान के श्वास से निकले है, और भगवान अपुरुष ही है, और वो जो बोलते हैं उसमें कोई गलती नहीं, और उसमें जो लिखा है वो मूल प्रमाण, उसके आगे सारे प्रमाणों को झुकना पड़ता है। इसलिए हे सनातन, कोई भी बात लिखो प्रमाण से बात करो। अपने मन से नहीं, ये महाप्रभु ने वाराणसी में बोला। यहां पर रामानंद राय से कहते हैं, प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्य र प्रमाण। देखो साध्य क्या है, मतलब हमें करना क्या है, हमें हमारा लक्ष्य क्या है, हमें पाना क्या है, इस बात को जानने समझने के लिए हमें शास्त्रों से प्रमाण मिलेगा। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बोला है, जरूर पढ़िएगा भक्तों, तस्मात शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य विजानतो हो। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विशेष जानकारी कहां से मिलेगा? टाइम्स ऑफ इंडिया से। कहां से मिलेगा? गुजरात समाचार से। आज लोग बोलते पेपर में लिखा है, पेपर में लिखा है मतलब क्या है? पेपर की चिड़िया वो पेपर वाला तो खुद गलत बोलता लिखता है। कुछ लोग कहते ना रामायण में ऐसा वर्णन है, हमने कहां पढ़ा? बोले टीवी में देखा है। लो लिखा है धर्म लोग गुजरात में आया ले। और वो लोग अपनी बुद्धि से किस पता नहीं क्या क्या झाड़ते रहते, कौन तो ये कोई प्रमाण हो गया क्या? भगवत गीता में लिखा है वो प्रमाण। भगवान कहते शास्त्रम प्रमाणम, तो शास्त्र किसे कहते हैं? हाँ ये भी समझ लीजिए, भगवान कहते कि प्रमाण वो है जो शास्त्र में लिखा है। शास्त्र किसे कहते हैं? स्कंद पुराण में व्यास जी ने लिखा, यजुर्वेद साम अथर्व, ये जो वेद है, महाभारत है और रामायण है, ये शास्त्र। इसको शास्त्र किसे कहते हैं? इसका भी नाम लिखा है। और आजकल जो सब शास्त्र चल रहा है, हमारे गुरु जी ने ये लिखा ये शास्त्र, ये इससे बोलने से कोई शास्त्र हो जाता? शास्त्र किसे कहते हैं इसका भी वर्णन व्यास जी ने कहा है, किया है। और इसके अनुगत्य में उसकी पुष्टि करने वाले सिद्धांतिक ग्रंथ है, वो भी शास्त्र है। लेकिन इसके विरोध में मनगढ़ंत जो कचरा चल रहा है वो तो कुतर्क है, केवल पाखंड है। लेकिन सुखदेव जी ने शोक प्रकट किया है भागवत जी में वर्षा ऋतु के वर्णन में, कि जैसे वर्षा ऋतु में बादल इतने छा जाते हैं कि सूर्य दिखता चंद्र दिखता नहीं है, ऐसे ही कलयुग में ऐसे पाखंड शास्त्र छा जाएंगे कि गीता भागवत ढंक जाएंगे, दिखेगा नहीं। न पाखंडा कलो वेदा शब्द आया ना वहां भागवत जी में, सुखदेव जी शोक करते हैं। लेकिन फिर भी धन्यवाद और करोड़ों प्रणाम है इसी भक्ति विदान स्वामी शिल प्रभुपाद को, जिन्होंने पुराण अर्क अधुनोदिता आध्यात्मिक जगत का आदित्य श्रीमद भागवत सर्वत्र फैला दिया, देश विदेश जहां भी जाते थे एज इट इज भगवत गीता या श्रीमद भागवत गीता दिया जगत को वास्तविक वस्तु, क्योंकि भागवत को सूर्य कहा ना, भागवत को पुराण को प्रभुपाद इसी से बोलते थे। इसलिए आप देखिए इस्कॉन के, इस्कॉन की संस्था की नींव कितनी मजबूत है। प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्था में जो ग्रंथ डाले हैं नींव में, वो ये है भगवत गीता, श्रीमद भागवत, भक्ति रसा में सिंधु, चैतन्य चरितामृत, कोई डिगा नहीं सकता युगों युगों तक एक एक बात, एक श्लोक, एक सिद्धांत को। और बाकी कोई भी ग्रंथ आप दूसरे वगैरह देख लीजिएगा, एक लाइन सही है तो उसके पहले तुरंत गड़बड़ाएगा। अभी बात कर रहा है भक्ति की, तब तक मायावाद घुसेगा उसमें से, फिर वो कोई भी संस्था का ग्रंथ हो, नाम लेना नहीं चाहते हम। लेकिन विद्वान लोग इसको समझेंगे, जो नाम के काम के ही, नाम के ही खाली त्रिवेदी चतुर्वेदी नहीं समझेंगे, बुद्धि से त्रिवेदी चतुर्वेदी होगी वो समझेंगे कि वास्तविकता क्या है, कि वेद क्या कहता है। क्योंकि जिस साध्य की, भगवान की या इस भक्ति की बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक अप्राकृत है, और हमारी बुद्धि प्राकृत है, जड़ है। तो उस अप्राकृत तत्व को पाने के लिए अप्राकृत का संग करना पड़ेगा, और वो है भगवान से निकला हुआ शास्त्र, वहां से आया है ये जगत। क्या है चैतन्य चरितामृत का श्लोक? जीवेर कृपाय कृष्ण कैला वेद पुराण। इसके लिए ये जरूरी है। तो हमारा साध्य वस्तु क्या है? आप बोल सकते हो साध्य वस्तु भगवान नहीं, भक्ति नहीं, हमारा साध्य वस्तु है सुख आनंद। हम भगवान भक्ति नहीं मानते। आजकल की साधारण जनता को पूछा जाए, प्रभु जी आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, आप ये डिग्री के लिए मेहनत क्यों, आप यूएसए अमेरिका क्यों जाना चाहते? अपना पैसा इसके लिए ना, ये पैसा क्यों चाहिए? वहां से सुविधा मिलेगी, सुख मिलेगा, सुख देने वाली आइटम मिलेगी, मतलब तुम्हारा गोल, तुम्हारा साध्य, तुम्हारा लक्ष्य सुख और आनंद है, राइट? उसके पीछे विषय भले अलग अलग हो, लेकिन गोल क्या है सबका? साध्य सुख और आनंद। सुखाय कर्माणि करोति लोको, भागवत से भी बात करे, ब्रह्म सोच्यतम अनंतम, शाश्वत सुख चाहिए ना तुमको, वो शाश्वत सुख स्वरूप कृष्ण है, वो शाश्वत शुभदा भक्ति है, ये भले हम ना माने लेकिन सुख और आनंद मानते हैं। हम ये जान जाएंगे कि सुख और आनंद कृष्ण है, सुख और आनंद कृष्ण की भक्ति है, तब तो कल्याण हो जाएगा। ये प्रवचन पूरा सुन लेंगे तो इतना तो समझ ही जाएंगे, लेकिन वहां तक तो अभी हम नहीं पहुंचे। हम इतना मानते हैं कि हमारा साध्य, हमारा गोल सुख और आनंद है, और इसलिए हम सुख और आनंद को समझाने के लिए हमारे वेदों में चार श्रेणी है पुरुषार्थ के नाम में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्यों करते हैं लोग? आज समाज में सब लोग धार्मिक है, आप बोलोगे प्रभु जी वो लोग ने ये लाया, वो लोग ये ले रहे, इसकी पूजा कर रहे, इसकी कर रहे, सब धार्मिक। और पुरुषार्थ में सर्व पुरुष धर्म है, प्रथम पुरुष, लेकिन धर्म के पीछे भी गोल क्या है? हम यहां भी सुखी रहना चाहते हैं और मरने के बाद स्वर्ग में भी सुखी रहना चाहते हैं, इसलिए धर्म कर रहे हैं, राइट? यहां भी सुख आनंद जलसा पार्टी रहे और वहां जाके फिर अमृत और अप्सरा में पार्टी रहे। तो बियर बार वालों को बस यहां भी पार्टी, वहां भी पार्टी, इसलिए धर्म के कुछ करते हैं ना, मंदिरों में कुछ ना कुछ देते हैं, इधर उधर, इधर पंछी को डाना, क्या क्या करते पता नहीं, बहुत सारे विचार इसके, लेकिन लोग गोल सुख है। उसके बाद क्या आता है? अर्थ चाहिए ना, धन। कुछ लोग ऐसे हैं कि धन कमाते हैं, साथ में धर्म भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं, अपना यश भी चाहते हैं, नाम भी हो जाए, और इसी के लिए आप अपना नाम बढ़ाना चाहते हो, यश बढ़ाना चाहते हो, दान पुण्य करना चाहते हो, यहां सुख रहना चाहते हो, तो धन तो करना ही कमाना ही पड़ेगा ना। धन नहीं है तो आप कैसे दान दोगे, कैसे यश मिलेगा बताओ? धन नहीं है तो आप कैसे सुखी रहोगे? धन नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए आप अर्थ कमा रहे हो कि नाम भी हो जाए, काम भी हो जाए, परोपकार भी हो जाए, दान पुण्य भी हो जाए, सब हो जाए। ऐसे लोग धन के पीछे लगे हैं, और जो चाहते नहीं, यहां तो छोटा मोटा है, स्वर्ग में जाके बढ़िया से जलसा करेंगे, वो लोग धन कमाते कम है, वो धर्म ज्यादा करते हैं। इधर जाओ चल के, इधर जाओ भूखा उपवास में मरो, बिना पानी के ये करो, वो लोग पैसा नहीं कमाते, लेकिन उसको धर्म वो इसीलिए कर रहे कि और ज्यादा आगे मुझे मिले सुख। इसके बाद कौन आते? धर्म, अर्थ, फिर क्या है? काम। ये तो बड़ा खतरनाक है। काम वालों का क्या क्या टेंडेंसी है मालूम है? वो लोग करते हैं कि धर्म क्या है, धन क्या है, उसे मतलब नहीं, पशु जैसे बस, शास्त्र क्या कहता है, नाम मेरा बदनाम हो, समाज क्या कहे, उससे मतलब, पशु जैसे खाना पीना इंद्रिय तृप्ति भोग करो, चार वाक जावत जीवे सुखम वाली बात। ये काम वाले। अब कौन सा बचा? मोक्ष। कुछ लोग ऐसे हैं गिने चुने, वो क्या चाहते हैं? अरे पढ़ लिख के क्या करना है, आखिर एक दिन मरना है, इसलिए क्या करेंगे? हाँ सब बेकार है, जन्म मृत्यु से छूटना है, इसीलिए कुछ ज्ञान, कुछ योग, कुछ पंथ अपनाएंगे, मुमुक्षु पदवी पाने, मोक्ष पाने के लिए भोग विषय से वैराग्य लेके साधन भजन करेंगे। लेकिन भक्तों, आप विचार करिएगा बुद्धिपूर्वक हमारे इतिहास पर और हमारे शास्त्र वचनों पर, तो एक बात सामने आएगी कि ये धर्म, अर्थ, काम में सबसे आगे मोक्ष है। लेकिन मोक्ष प्राप्त किए हुए मुनिगण, शुकदेव, सनकादिक, नारद, शंभु आदि सब किसके लिए तरस रहे हैं? प्रेम के लिए। क्योंकि मोक्ष से भी बढ़कर क्या है? भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, जिसको महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ माना है। आत्माराम मुनिगण ब्रह्मलीन साधु समाधि छोड़ के प्रेम में श्रवण कीर्तन करने के लिए ललचाते हैं, ये हमारे सामने इतिहास है। और ऐसा कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति हमारा स्वरूप धर्म है। हम जीव स्वरूप से क्या है? कृष्ण के दास। तो हमारा धर्म क्या है? कृष्ण की सेवा। और सेवा का सार क्या है? जिसकी हम सेवा करते उसकी प्रसन्नता, वो खुश होना चाहिए बस, तो तुम्हारी सेवा सफल। और वो खुश होता है भक्ति से, प्रेमा भक्ति से। इसलिए महाप्रभु समझ में लाना चाहते सबके सामने कि कृष्ण के चरणों की उसको प्रसन्न करने वाली प्रेमा भक्ति ही जीवन का सार है, और वो गोपियों में थी और गोपियों में श्रेष्ठ राधा रानी में थी। ये रामानंद राय के संवाद का एंड है, लेकिन यहां शुरुआत में राय जी ने ये नहीं बोला प्रेमा भक्ति राधा प्रेम, नहीं, क्या बोला? राय कहे स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति होए। और इसके लिए श्लोक बोलने को बोला था ना, विष्णु पुराण का श्लोक बोला, वर्णाश्रम आचरवताम, वर्णाश्रम धर्म का आचरण करो, पुरुषेन पर पुमान, परम पुरुष जो भगवान कृष्ण विष्णु है, आराध्यते उसकी आराधना करो, पुंसाम सभी मनुष्य न अन्य तोष कारणम, उसको संतुष्ट करना, उस भगवान परम पुरुष की आराधना करना और कोई कारण नहीं है, इसीलिए वर्ण और आश्रम धर्म का आचरण करना है। ये पराशय मुनि ने विष्णु पुराण में बोला, वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेन पर पुमान, विष्णु आराध्यते पुंसा नान्य तत्तोष कारणम। देखो विष्णु पुराण से कोटेशन दिया, क्या पढ़े धर्म बताया कि साध्य निर्णय बताओ, तो बोले वर्णाश्रम धर्म का आचरण करो, इससे विष्णु भक्ति की प्राप्ति होगी। महाप्रभु ने कहा ए हो बाह्य है, इट इज एक्सटर्नल, ये बाहर की बात है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। मुझे लगता है कि प्रसाद का टाइम हो गया और आप लोग गहरे विषय में आ गए लास्ट मोमेंट में। ये जो विषय शुरुआत का विषय, क्योंकि प्रसंग कोई भी हो प्रवचन में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति 15-20 मिनट तक ठीक होता है शुरुआत में, और लास्ट के 15-20 मिनट तो महाप्रसाद में ही होता है, और उस समय आप ये दिमाग खा रहे हो ऐसा ऐसा हो ऐसा ऐसा प्रसंग आ गया अब करे तो करे क्या बताओ। वर्णाश्रम की बात हो रही, एक प्रश्न होगा ना कि जीव का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम भक्ति है, तो यहां राय रामानंद वर्णाश्रम धर्म के पालन की बात क्यों कर रहे हैं? सीधा बोलना चाहिए कृष्ण प्रेमा भक्ति साध्य है, जो 5-10 श्लोक के बाद बोलने वाले हो पहले नहीं बोल सकते। जैसे कभी 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 होता है ना प्रसाद में आज क्या है, तो जो जो रसिक रत्ता होता है ना प्रसाद प्रेमी, वो कहता है आज आज पूरी है, आज सब्जी है, जो खीर रसम बाद में बोलता है रसमलाई भी है, पहले बोलना है। जो आइटम वो पहले बोलना चाहिए ना, अभी पहले बोल रहा है राइस है दाल है, वो तो होता ही है यार, और कुछ है कि नहीं? तो आप किसी को प्रसाद में रोकना चाहते हो तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत क्या बोलेगा, रसमलाई है प्रभु, फिर बोलेगा दाल सब्जी सब है, लेकिन उसको पता है कि रुकेगा दाल सब्जी से नहीं, रुकेगा इससे। तो फिर यहां ऐसे क्यों है, पहले ही बोल देना चाहिए प्रेमा भक्ति साध्य हो, वर्णाश्रम की बात से शुरू करने का कारण क्या है, एक प्रश्न होना चाहिए ना। जो जागते उसको होता है, बाकी तो ये भी नहीं होता, क्या प्रश्न क्या है, संवाद ही ऐसा है भक्तों। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं कोई कोई प्रसंग ऐसा होता है कि जिसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें दो काम जम के करना है, याद रखिएगा, कोई भी प्रसंग कोई भी श्लोक कोई भी प्रवचन आपको समझ में ना आए, जैसे क्रिकेट में बॉल पिच पर टप्पा ना गिरे और विकेट कीपर के हाथ में ही सीधा जाए बाउंस, ऐसे ही कभी कभी वक्ता कोई क्या होता है बाउंस, ऐसी कभी स्थिति आए तब दो काम जम के करना है, क्या? महाप्रसाद दिल से खाना है और महामंत्र का कीर्तन जम के करना है, बस एक दो काम ये तो हम कर सकते हैं ना किसी, बाकी ये जो है धीरे धीरे सब आएगा, और न भी आए तो भी टेंशन, हमने हमारा काम कर लिया, क्योंकि हमारे गुजराती माँ कहे जाणवो नथी यार माणवो पण छे, खाली जाणवामां जमुक रही गया, बारिश होता है
तो ठंडा हवा आता है, बारिश होता है तो रिमझिम।
अबे शर्ट काटे नावा जा, व्याख्या क्यों करके कर खाली प्रवचन नहीं, अरे नाना है यार। कोई कहे रसगुल्ला में इसका आटा होता है, फिर चाशनी होता, एक व्याख्या क्या है मुंह में डालना। मानुष है भाई, तो हमें एक महामंत्र में जोमना है, महाप्रसाद खाना ये भी है, लेकिन ओके ये है रेसिपी है। लेकिन रेसिपी कोई ना जाने तो भी स्वाद तो वही आएगा। मान लीजिए आप रसगुल्ला रेसिपी जानते हो और रसगुल्ला रेसिपी नहीं जानते हो, खाने में तो नहीं जानने वाला ज्यादा आनंद लेता है, जानने वाला तो डायबिटीज मापेगा कि यार नहीं खाना चाहिए। वो नहीं जानता होगा गपा गप मारेगा। होता है कि नहीं बताओ। इसलिए इतना टेंशन मत लेना, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के सिद्धांतों को जानने से हमारा भक्ति दृढ़ होता है, मजबूत होता है। इसलिए नींद भले आए, सिद्धांत जानिया चित्ते ना करो आलस। यहां है ते कृष्ण लागे सुदृढ़, कृष्ण सरल हो जाएंगे आपके लिए, कृष्ण भक्ति नस में आ जाएगी। जैसे कभी कभी होता ना, कोई दवाई नस में जाती है सीधा, ऐसे ही अगर सिद्धांत से समझोगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैं आपके सामने प्रश्न रखा था कि प्रेमा भक्ति की बात करनी चाहिए, क्यों ये कर रहे हैं? सुनिए, उत्तर भी वही आचार्यों ने दिया है, जो प्रश्न करते हैं वही उत्तर देते हैं। कितना सुंदर हमारा ये व्यवस्था है, प्रश्न भी हो करे उत्तर भी हो दे, बस हमें तो केवल सोना, अरे सॉरी सुनना है। ओके, बस केवल जागना है और कुछ नहीं करना। सामान्य जनता में या फिर जो भी हो, विद्वत समाज भी हो, वैष्णव समाज भी हो, साध्य के विषय में जो आजकल जीवन के परम भक्ति धर्म के जो सिद्धांत में जो भ्रांत धारणाएं आजकल सर्वत्र है कलयुग के कारण, साधक के विषय में साध्य तत्व के बारे में जो भ्रांत धारणाएं है, उसका क्रमशः समाधान करने के लिए श्री रामानंद राय सीधा प्रेम भक्ति का बात न करके, वर्णाश्रम की बात करके, मोक्ष की बात करके, फिर प्रेमा भक्ति की बात कर रहे हैं, ताकि आज का ये जो मानव समाज है वह ये जो अन्य भ्रांत धारणाएं है उसके वास्तविक रूप को जाने और शास्त्र के वास्तविक साध्य सिद्धांत जो है उसके स्वरूप को जाने, और उसको जान के क्या करे, उसकी भक्ति में, उसकी प्राप्ति में उसकी प्रवृत्ति हो जाए, श्रद्धा के बाद, निष्ठा के बाद प्रेम तक पहुंच जाए। आदो श्रद्धा ततो साधु संघ के अनुसार हम लोग सब भक्त है। इस शास्त्र में ये लिखा है, ये संप्रदाय ये कहता है, ये लिखा है, ऐसा सब है ना। अगर सीधा ये बोल दे तो हमें लगेगा कि उधर तो ये बोला है, लेकिन ये भी बोला है, ये भी बोला है, और ये इससे श्रेष्ठ, ये इससे श्रेष्ठ, इस तरह बोलते हुए सार वस्तु सामने रखी जाए, ताकि हमारा ये भ्रांत धारणा भी समझ में निकल जाए और इसको पाने के लिए हमें लालसा बढ़ जाए। नहीं तो सब कॉमन लगता है ना कि हाँ ये भी है, ये भी है। इसलिए रामानंद राय बड़े तत्वज्ञ व्यक्ति है, क्योंकि महाप्रभु इसके साथ संवाद करने इसीलिए बैठे हैं ना, कि सारे साध्य साधन को शास्त्र के अनुसार क्रमश बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट के अनुसार क्लियर कर दिया जाए, है ना। भक्त तो सब है, लेकिन भक्तों में है ना ब्रस के अनुसार, भाव के अनुसार, तारतम्य दास्य साख्य वात्सल्य के अनुसार, और माधुर्य में भी सब है, लेकिन माधुर्य में भी परकीय है ना, परकीय में भी गोपी और राधा रानी है ना। पढ़िए बृहद भागवतामृत, तारतम्य बताया गया उच्चतर तक, ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसीलिए इसका क्रमशः विश्लेषण करके वास्तविक सिद्धांत तक जाना है। अब सुनिए, वर्णाश्रम आचरणम, वर्ण और आश्रम का पालन करो, ये विष्णु पुराण बोल रहा है। ओके, लक्ष्य बता रहा है, ये साध्य बता रहा है पहले श्लोक में। वर्ण कितने हैं? चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण सत्व प्रधान, सत्व गुण ज्यादा होता है उसमें, अजन याजन स्वचम तपम ये सब कर्म है ना गीता में ब्राह्मण के। दूसरा है क्षत्रिय, रजोगुण प्रधान, मतलब युद्ध च पलायन, क्षत्रियता में थोड़ा अपना गुण होता है। आजकल कोई बच्चे बैठे होंगे यहाँ, तो उसको समझाने के लिए मैं बोला,
उसका ये मूड होता है क्षत्रिय, रजोगुण प्रधान होता है। तीसरे वैश्य, प्राय हम सब आते हैं, रजोगुण तमोगुण दोनों प्रधान हम लोगों में, इसलिए व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, सब करते हैं, सबका धंधा हम करते हैं। हम लोग ऐसे वैश्य, क्षत्रिय का भी काम करेगा, ब्राह्मण का भी करेगा, अपना भी करेगा, शूद्र का भी करेगा, सबका करेगा, फिर भी नजर रखेगा और क्या करता है कोई, क्योंकि वो मिक्स ही है और शूद्र तमोगुण प्रधान, आलस निद्रा प्रमाद प्राय इसमें होता है। ये वर्ण है। आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 100 वर्ष की आयु में 25-25 वर्ष बांटा गया, और वर्ण और आश्रम दोनों मिला के यहां कहा जाए कि वर्ण में जो है, आश्रम में जो जहां हो उस अनुसार उसके जो शास्त्रों में धर्म कर्तव्य बताए हो उसका आचरण करे। क्षत्रिय अपना काम करे, ब्राह्मण अपना काम करे। आज कलयुग ऐसा है कि कोई अपना काम कर रहा नहीं है, ब्राह्मण लोग शूद्र का काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाय कॉफी पीड़े तम्बाकू खा रहे हैं, शूद्र लोग सेठ बन पड़े हैं, बिजनेसमैन बन गए। आप देखो हो रहा है ना कलयुग की उथल पथल, आप देखिए संसार में। क्षत्रिय लोग रक्षण करना चाहिए, खुद डाकू भक्षण बन कर रहे हैं, सब अपने से पद से कलयुग के प्रभाव से। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, अपवाद है, लेकिन प्राय ऐसा दिखता है। अच्छा, ये वर्ण आश्रम कौन बनाया? भगवद्गीता 4:9 क्या श्लोक है? चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये चार वर्ण आश्रम मया, मेरे द्वारा सृष्टिम। और कैसे? गुण कर्म विभाग, गुण के द्वारा, कर्म के द्वारा। पूर्व जन्म में जो गुण रहे होंगे उसमें कर्म किए होंगे, तो इस बार वो क्षत्रिय कुल में आएगा, क्योंकि कुल में आना उसके पहले के आत्मा का कुछ कर्म गुण होगा ना, तभी उस कुल में आया। गुण कर्म के अनुसार फिर उसी कर्म स्वभाव के अनुसार वो जीवन में दिखता है। आज को विश्लेषण, उदाहरण के लिए आपको कभी कथा बताना हो तो आप बता सकते हो, परशुराम और उसके जन्म की कथा, ब्राह्मण क्षत्रिय चेंजेस हो गया। विश्वामित्र क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मण कर्म में, क्योंकि मंत्र उसी तरह पढ़ा गया था, और ये महाराज ब्राह्मण है लेकिन कुहाड़ा लेके ही चलते थे, परशुराम महाराज जयदेव जी ने गा लिया, क्षत्रिय रुधिरमये जगत भगतापम, क्षत्रियो के खून की नदियां बहा दी, केशव धीतर, जो केशव अवतार लेने वाले तो वही है, रघुपति रूप, भृगु वंश में आए ना, इसलिए भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। अच्छा, ये चतुर्वर्ण्यम जो बनाया गया, ये आश्रम बनाया गया, और भगवान के तस्य कर्तारमपि माम, मैं उसका करता हूं, लेकिन अविद्य अव्ययम दिखता नहीं है, जान तो जानने वाले जानते हैं, लेकिन इसका कर्ता तो मैं हूं। और इसीलिए 18वें अध्याय के 56 नंबर श्लोक में गीता में भगवान कहते हैं, स्व स्व कर्मणे अभिरत संसिद्धि लभते नरा। कोई क्षत्रिय अपने क्षत्रिय कर्म में रहे, धीरे धीरे वो सिद्धि को पाएगा। ब्राह्मण है अपने कर्म में रहे, सिद्धि को पाएगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई, ये बताओ ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ, क्योंकि ये वर्णाश्रम जो है, ब्राह्मण अपना काम करे, क्षत्रिय अपना काम करे, ब्रह्मचारी अपना काम करे, गृहस्थ अपना, ये काम करने के पीछे हेतु क्या है कोई जानता ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप कहा जाए कि प्रभु जी हमारे गांव में इसकी शादी इसके साथ है, अब जिसकी दोनों की शादी उसको बुलाया जाए कि आप दोनों शादी क्यों कर रहे हो, क्या उत्तर होगा? पता ही नहीं, बस पिताजी ने किया एवं परंपरा प्राप्त, सब लोग कर रहे इसलिए हम भी कर रहे हैं, या फिर इंद्रिय तृप्ति करेंगे, टिकट आ चुका है कुल्लू मनाली का। शादी के पीछे उद्देश्य क्या है बताओ? ब्रह्मचारी बने हो, उद्देश्य क्या है? कोई भी वर्ण आश्रम धर्म हो उसके पीछे हेतु क्या है, वाई क्यों, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को, बस चल रहा है चक्कर कर रहे। और इसीलिए पाखंड आ गया कि आसुरी वर्णाश्रम हो रहा है। प्रभुपाद चाहते थे देवी वर्णाश्रम होना चाहिए, कि वर्ण आश्रम में रहते हुए व्यक्ति क्या करे। तो विष्णु पुराण कहता है कि ये वर्ण और आश्रम, गृहस्थ ब्रह्मचारी, इस समाज को सामान्य सदाचार में लाकर विष्णु भक्ति कराने के लिए, विष्णु भक्ति करना उद्देश्य है, विष्णु भक्ति के स्तर तक पहुंचा जा सके, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम में रहते रहते धीरे धीरे अपने गुणों में सत्व गुणता आएगी और फिर साधु संघ होगा, फिर व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति में आ सकता है। नहीं तो अपने कर्तव्य पद से ही गिरा हुआ होगा और क्या कहे वर्ण संकर बन जाएगा, तब तो भी भक्ति में आने का तो बहुत दूरी हो जाएगा, प्रश्न ही नहीं रहेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वधर्म आचरण करीते से हो रव रव पड़ी मजे। चारों धर्मों का पूर्ण आचरण करते हुए भी कृष्ण का भजन नहीं किया तो सीधा नरक जाएगा। तो भक्तों, ये वर्णाश्रम धर्म जो है वो भक्ति का अंग नहीं है, ये बाह्य कहा। महाप्रभु ने क्या कहा? ये हो बाह्य। बाह्य किसको कहा? वर्णाश्रम धर्म को बाह्य कहा, विष्णु भक्ति को बाह्य नहीं कहा। अब क्या क्या समझाए, बहुत गहन हो रहा है ये सब। महाप्रभु कहे ये हो बाह्य, तो बाह्य क्या? विष्णु भक्ति। राय में क्या कहा? स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति हो, स्वधर्म का आचरण करने का हेतु है विष्णु भक्ति करो। तो महाप्रभु ने कहा एहो बाह्य, तो एहो बाह्य विष्णु भक्ति बाह्य, विष्णु भक्ति बाह्य नहीं, स्वधर्म आचरण बाह्य। तो बाह्य मतलब क्या? आत्मा से अलग है ये वस्तु। बाह्य मतलब ऐसे कहते ना, ये बाहर का है, मतलब हम क्या है? आत्मा। और ये वर्ण आश्रम बाहर का है, क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं है, हम गृहस्थ नहीं है, हम क्षत्रिय नहीं है, हम आत्मा है, ये बाह्य है। तो मतलब भक्ति स्वरूप सिद्धा है, तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है वो भक्ति का अंग नहीं है। भक्ति का अंग है श्रवण कीर्तन स्मरण नवदा भक्ति। अब फिर एक प्रश्न होगा, अब आपको प्रसाद के पास भेजूंगा, लेकिन ये प्रश्न भेजे में डालोगे कि प्रभु ये वर्णाश्रम धर्म जो है वो भक्ति का अंग नहीं है, बाह्य है, तो फिर राय ये क्यों कह रहा है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से विष्णु भक्ति हो, जब इसका संबंध ही नहीं है बाह्य, तो इसे जोड़ क्यों रहे? प्रश्न है ना, समझ में आता है प्रश्न कि अगर ये वर्णाश्रम धर्म आत्मा से अलग है, बाह्य है, तो फिर राय ये क्यों कह रहे कि विष्णु भक्ति हो। श्रीपाद जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बड़ी सुंदर बात समझाते, आरोप सिद्धा संग सिद्धा स्वरूप सिद्धा। भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषिता नहीं है, लेकिन भक्ति का आरोप किया गया है, ऐसे कार्य को आरोप सिद्धा कहते हैं। जैसे दूध नहीं है गाय का, लेकिन पाउडर डाल के क्या दिखता है आपको? दूध ही बन, दूध आरोप है लेकिन दूध नहीं है, वो छाछ नहीं है लेकिन ममरा मुड़ी मिक्सर मार के पानी डाल के छाछ बढ़ाओ छाछ बढ़ाओ। हम लोगों ने खुद बढ़ाया है इस तरह, 50 आदमी का छाछ घट जाए, बस 10-12 लीटर पानी डालो, काम बन गया। आरोप है नहीं छाछ, लेकिन छाछ जैसा ही है, अब क्या करें बताओ। भक्ति का अंग नहीं है ये, इसलिए इसमें वास्तविक कहना क्या चाहते, अंततः सारे धर्म के विषय में वर्णन आता है कि भक्ति के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए वर्णाश्रम धर्म को त्यागना पड़ेगा। और इसकी बात स्वयं कृष्ण गीता में कहेंगे, सर्व धर्मान, यहां कह रहे कि धर्म आचरण करो, यही कृष्ण कहे ना अभी गीता में, चतुर्वर्ण में बनाया, इसका आचरण करने से सिद्धि पाओगे। तो प्रभु जी अंत में क्यों कह रहे हैं कि सब धर्म छोड़ दो, तो हम लोग तो चटनी सैंडविच बन गए भाई, पालन करें कि ना करें। एक जगह कह रहे हो कि यहां तक गीता में बोला कृष्ण ने, वो क्या है, वो एक श्लोक है ना, कि वो पालन करते हुए मरोगे तो सिद्धि को पाओगे, अपने धर्म में रहते हुए अगर शरीर भी छूट जाए तो भी चिंता नहीं है, यहां तक बोल दिया है। और जबकि मुंडक उपनिषद आदि के मंत्र है हमारे पास यहां लिखे हुए कि वर्णादि धर्म ही परित्यज्य, मुंडक उपनिषद कहता है कि आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्म प्राप्ति कोई चाहता है तो उसे वर्ण धर्म को त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सुदृढ़ नौका नहीं है। पर कृष्ण ने स्वयं गीता में कह दिया, उपनिषदों का सार भगवत गीता कहता है कि सब धर्म छोड़ो, पर आप कह रहे हो कि वर्ण धर्म से भक्ति होगा। क्या वास्तविक बात यह है भक्तों कि वर्ण आश्रम में रहते हुए सदाचार पालन करते हुए धीरे धीरे सत्व गुण बढ़ेगा, बुद्धि शांत स्थिर होगी, तब किसी साधु का संग होगा और उसके संग में आप
कुछ कुछ भक्ति के स्तर तक आ सकते। वर्णाश्रम धर्म भक्ति नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भक्ति के स्तर तक जाया जा सकता है, सहायक है, आरोप सिद्धा है। इसलिए कह रहे हैं कि धर्म आचरण करो, क्योंकि जो लोग शुद्ध भक्ति के अधिकारी नहीं है, अनन्य भक्ति आचरण नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो वर्णाश्रम धर्म पालन ही बेस्ट है, क्योंकि कम से कम बीजा ने तो हक्कीन जीवा दे हमारे गुजराती में के, कि वो खुद भजन न करे तो कोई बात नहीं, लेकिन सोसाइटी वाले पड़ोसी तो शांति से रहे उनके कारण। वर्णाश्रम में जो जिसका काम है उसमें वो करे, तो कम से कम दूसरे तो सुख से जिए, दूसरे समाज। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इस तरह की बातें बोली गई है, लेकिन महाप्रभु बोले ये सब बाह्य, ये बाह्य है। तो आप क्या कहे? बोले कर्माचर्पण भक्ति है। और फिर बताएंगे कि आप जो भी कर्म करते हो, यज्ञ होसी यज्ञ दासी सब मुझे अर्पण करो। और इस तरह बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, लेकिन हम भी धीरे धीरे ऊंचे ऊंचे जाएंगे, क्योंकि ऊंची बात समझने के लिए ऊंचा तो बनना पड़ेगा। और ऊंचा बनने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, दो काम करना है, महाप्रसाद खाना है, महामंत्र जपना है। इससे हम क्या बन जाएंगे? ऊंचे लोग। ये ऊंची पसंद है, वो वाली नहीं, वो मानीचंद वाला कहता है। वो नीची थर्ड क्लास पसंद है। वास्तविक ऊंचे लोग, ये ऊंची बात है। वैष्णव सबसे ऊंचा है, और वैष्णव धर्म ऊंची पसंद होनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। ओके, धन्यवाद। मैं बहुत आपके दिमाग को कष्ट दिया, सभी जाग जाइए, अभी प्रवचन खत्म हो गया। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।